का श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया मेरे बार दोहराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरोभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूं वर्गेन वा कल्पितम् श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो न परम् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो न परम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बनाधरोष्टाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटास्य पत्रा सपुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहिवे पिबस्वा मृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदर माधवेति गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों और सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं इस भागवत कथा के प्रथम दिवस में। तो अभी अभी सुंदर सा एक फेस्टिवल मनाया गया सारे पूरे अभी तो विश्व विकसित एक फेस्टिवल है गणेश चतुर्दशी। अभी भी ये फेस्टिवल समाप्त हुआ है ना, 12 तारीख को समाप्त हुआ। तो गणेश जी जो कि इस संसार के सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाले, तो उनका अभी भी सुंदर फेस्टिवल समाप्त हुआ और साथ साथ में अभी एक सुंदर सा तिथि प्रारंभ हुआ जो कि आज पूर्णिमा भद्र पूर्णिमा है, भाद्र मास का प्रारंभ हुआ और साथ साथ में आज पितृपक्ष श्राद्ध जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं ना, पितृपक्ष क्या बोलते हैं यहाँ के भाषा में, मराठी भाषा में पितृपक्ष, तो उसका भी शुभारंभ हुआ। और इस पितृपक्ष में और इस भद्र पूर्णिमा ये सबको देखते हुए आज से इस स्थान पे पांजरपुर गौशाला जलगांव इस गौशाला में पवित्र जगह पे आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह का भी प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम मैं सभी विघ्न को विनाश करने वाले और वैष्णव जगत में पूजने भगवान नरसिंह देव को मैं प्रणाम करते हुए और उनके चरण कमलों में मैं प्रार्थना करते हुए इस सत्र का प्रारंभ करना चाहता हूं। देखिए अभी अभी जो सुंदर सा जो फेस्टिवल गया गणेश चतुर्दशी, तो गणेश जी जो कि पूरे विश्व विख्यात फेमस है विघ्न के विनाश विघ्न का नाश करने के लिए, तो वो विघ्न विनाशक गणेश जी भी विघ्नों को नाश करने की जो शक्ति उनको प्राप्त होती है ना, क्योंकि सभी देवताओं में बहुत विशेष व्यक्ति है व्यक्तित्व को रखते हैं गणेश जी। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गणेश की अगर गिनती इन देवताओं में भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह विशेष है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि गणेश जी जो है एक ऐसा पदवी है, गणेश नाम नहीं है पोस्ट है, एक ऐसा पोस्ट है जहां पे भगवान एक ऐसे विशेष जीव को ही वहां पे स्थापित करते हैं, क्योंकि विचार करिए पूरे संसार के विघ्न को दूर करने वाले ये ऐसा पोस्ट है जो कि जिन कोई उनके शरण में गया तो उनका कार्य क्या है उनके विघ्न को नाश करना। तो ये गणेश जी जो भी गणेश भी जिस जगह से शक्ति प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमाश जगत्रयस्यं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का ग्लोरीज करते हुए ब्रह्मा जी इस श्लोक में गणेश जी की महिमा को बता रहे हैं, गणेश जी के बारे में बता रहे हैं कि जो गणेश इस संसार के विघ्न को दूर करने वाले हैं, ऐसे गणेश विनिधाय कुंभ जो कि अपने सर को कुंभ जिनका सर हाथी के मस्तक के समान है, ऐसे कुंभ को भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रणाम करके वहां से शक्ति को अर्जन करके पूरे विश्व को वो विघ्न से विनाश करके उनको मुक्त करते हैं, उनके जीवन से विघ्न को हटाते हैं। तो ऐसे भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करते हुए ताकि देखिए किसी भी कार्य को का शुभारंभ करना है तो हमको जो विघ्न विनाशक है उनकी स्तुति और उनसे प्रार्थना करते हुए हमको प्रारंभ करना है, तभी जाके हमको उनकी कृपा प्राप्त होती है और निर्विघ्न वो कार्य संपन्न होता है। तो भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते हुए और तत्पश्चात यहाँ पे जितने भी बैठे हुए वैष्णव जन हैं और श्रोता हैं श्रद्धालु हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करते हुए इस सत्र का शुभारंभ करना चाहता हूँ। और विशेषता इस पितृपक्ष के शुभ उपलक्ष्य में ये जो भागवत कथा को रखा गया है या ललिता कुंड माता जी जो कि वापी में रहती है तो उन्होंने कुछ महीनों पहले मुझसे इस बात को शेयर किया कि उनकी जो बहन है वह शरीर को त्यागी है, तो मैं अपने तरफ से उनके लिए क्या कर सकती हूँ उनका एक प्रश्न था, क्योंकि मुझे मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो इस संसार में अगर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो वह है भागवत का श्रवण करना और भागवत उसके उपलक्ष्य में भागवत करना है, कोई भी कार्य इसकी हम महिमा को सुनेंगे। हम आज के सत्र में और कल के सत्र में, दोनों सत्र में हम केवल भागवत की महिमा के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे और तत्पश्चात हम भागवत के कथा को प्रारंभ करेंगे। और साथ साथ में एक भागवत कथा इस पितृपक्ष में सुनने का क्या लाभ है, और उस चीज को भी हम साथ साथ में श्रवण करेंगे। तो विशेष करके पुरुषोत्तम चौधरी और उनके जितने भी परिवार के सभी सदस्यगण हैं जो कि सुबह सुंदर सा भागवत कथा का आयोजन किया, जो कि मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी आयोजन करेंगे, क्योंकि मुझे इसी प्रकार का बताया गया था कि घर के अंदर करना है। फिर शायद प्रभु जी चैतन्य जीवन प्रभु उन्होंने भी फोन किया था, उन लोगों ने विचार विमर्श करके आपस में ये जो सुंदर सा 7 दिवसीय जो भागवत कथा रखा है और बहुत ही सुंदर प्लेस पे रखा हुआ है, मैं बहुत मेरा हृदय प्रसन्न हो गया एक्चुअली जब यहाँ पे मैं आया, क्योंकि विशेष लगाव है मेरा गाय माता के प्रति। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सुंदर सा वापी में एक सुंदर सा गौशाला का निर्माण करने का, और काफी मैं शुरुआत से ही मैं इस क्षेत्र में गाय माता के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और विशेषतः मैं इस 7 दिवसीय के किसी एक दिन हम गौ कथा भी करेंगे, गाय माता के विषय में कथा, और क्योंकि बहुत उनके स्थान में उनके चरण कमल में बैठकर हम भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम गाय माता के भी कथा एक दिन करेंगे। तो बहुत सुंदर सा ये जो आयोजन है भागवत कथा का, तो ऐसी भागवत की परिपाटी ही ऐसी है कि हम जब भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं तो उस समय भागवत की महिमा का श्रवण करते हैं। देखिए भक्तों, अगर हम भागवत की महिमा का अगर श्रवण नहीं करेंगे तो भागवत में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। हमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी अगर प्रेम उत्पन्न करना है तो हमें पहले उसके विषय में जानना होता है, उसके विषय उसकी महिमा को जानना होता है, तब जाके हम उनको पूर्ण रूप से प्रेम को प्रकट कर पाते हैं, है कि नहीं, ये साधारण तभी देखा गया है। तो भागवत कथा का शुभारंभ करने से पहले हम भागवत की महिमा का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम भागवत की महिमा को प्रारंभ करने से पहले मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि भागवत की जो महिमा है वो भागवत में नहीं है, भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। भागवत की महिमा पद्म पुराण स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसकी महिमा का गायन किया गया है। यहां सबसे प्रथम शिक्षा हमको ये मिलता है कि भागवत जो है अपनी गुणगान स्वयं नहीं करता है, इसलिए भागवत में भागवत की महिमा नहीं है। ये बहुत बड़े सिद्धांत को प्रस्तुत करता है कि हमें कभी भी अपने महिमा का गान कभी भी अपने मुख से नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम अपने मुख से अपनी महिमा का गायन करेंगे वो आत्म श्लाघा का दोष उस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति का पतन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो भागवत सबसे बड़ी शिक्षा प्रारंभ में हमको ये मिलता है कि भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। यह सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि व्यक्ति को, किसी भी महान पुरुष को अपनी महिमा अपने मुखारविंद से कभी भी नहीं गाना चाहिए। यह हमको शिक्षा देता है भागवत, इसलिए भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। यही है, महान लोग कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। देखिए, कभी महान लोग अपनी बड़ाई नहीं करते इसका मतलब यह नहीं कि उनकी महानता समाप्त हो गई, उनकी महानता समाप्त हो जाती, क्योंकि हम अपने गुणों को गाते ही रहते हैं। हम थोड़ा भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हम 4 लोग को बताते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने क्या क्या नहीं किया, है ना, गाते ही रहते हैं। लेकिन हमको यहां से शिक्षा प्राप्त होती है कि अपनी महिमा का गायन हमको नहीं करना चाहिए। अगर महानता है उस व्यक्ति के अंदर, एक गुण है जो कि बहुत विशेष गुण है महानता का, अगर उसके अंदर एक गुण है तो अपने मुख से गायन कर, ऐसा नहीं कि उसका एक गुण मुख से गायन करेगा तभी बचा रहेगा, ऐसा नहीं है। महान व्यक्ति की महानता जो है ना, कभी भी
वो मूंछ से गाएगा तभी संसार के लोग जानेगा, ऐसा नहीं है। वो कभी भी महान है तो महान है। जैसे राजसी यज्ञ में भगवान कृष्ण इतना बड़ा यज्ञ का जो आयोजन किया था युधिष्ठिर महाराज ने, उस समय भगवान कृष्ण का एक बहुत विशेष सेवा रखा गया था। क्या था सो सेवा? चप्पल। सो स्टैंड में उनकी सेवा को रखा गया था। जितने भी गेस्ट आते थे भगवान कृष्ण चप्पल को लेकर उनको चप्पल स्टैंड में रखते थे, है ना। इस्कॉन में फेस्टिवल होता है तो चप्पल सेवा एक विशेष सेवा होती है। वहां पर कुछ भक्त लोग रहते हैं जो कि चप्पल सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण ने ये सेवा किया तो क्या उनकी महानता कम हो गई? है ना, चप्पल सेवा निम्न सेवा माना जाता है ऐसा संसार के दृष्टिकोण से है, भगवान के दृष्टिकोण में नहीं है। भगवान के दृष्टिकोण में तो हर एक उनके लिए जो सेवा किया गया है, चाहे झाड़ू मारने की सेवा हो, चाहे उनका आरती पूजा करने की सेवा हो, वो सब भगवान की नजरों में समान है। तो भगवान कृष्ण ने वहां पर चप्पल की सेवा किया था, क्या उनकी महानता कम हो गई? नहीं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का ड्राइवर बना, अर्जुन के ड्राइवर बने, और यहां तक कि पूरे दिन युद्ध चलता था। भगवान कृष्ण दिन भर तो रथ को चलाते ही थे, लेकिन रात्रि में भी वो सोते नहीं थे। रात्रि में उन घोड़ों का मसाज करते थे और उस रथ के पहिया चक्का इत्यादि, उसमें तेल पानी इत्यादि सारा पूरा रात सेवा करते थे। तो ड्राइवर बने भगवान, तो क्या उनकी महानता कम हो गई? नहीं, महानता कम नहीं हुई। तो महान व्यक्ति का महानता उसके अंतर्गत है, तो अपने मुख से गुण का उस महानता का गायन करने से वो महानता बची रहेगी, ऐसी नहीं है। तो कभी भी ये भागवत हमको शिक्षा देता है कि कभी भी अपने मुख से अपनी महानता का गायन नहीं करना है। इसलिए भागवत की महिमा जो है भागवत में नहीं है। और वैसे भी श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमको शिक्षा देते हुए कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिनो मानदेना कीर्तनीय सदारी। कीर्तनीय सदारी, अगर इस कीर्तन को अगर हम करना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो हमको इन सारे चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। त्रिनादपि, तृण से भी अधिक नम्र, पेड़ से भी अधिक सहन शक्ति रखना, अमानिनो मानदेना, मान की इच्छा न रखना, और ये इच्छा न रखते हुए दूसरों को मान देना, ये सारे गुण है वैष्णव के। तो कभी भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है अपनी महानता अपने मुख से कभी भी ज्ञान नहीं करता है। तो इसलिए भागवत की जो महिमा है वो भागवत में नहीं है। वेदव्यास मुनि भागवत का शुभारंभ करने से पहले वो भागवत की महिमा को गायन करते हैं, और सबसे पहले गायन करने से पहले वो अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो बहुत सुंदर सा प्रणाम है, हम भी वेद व्यास जी ने जो प्रणाम किया हम भी उसका प्रणाम करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। वेद व्यास जी अपने पूज्य भगवान कृष्ण को स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुग, श्री कृष्णाय वयं नुग। वेदव्यास मुनि भागवत की महिमा को प्रारंभ करने से पहले भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। यहां पे इसमें कृष्ण का परिचय देते हुए वेदव्यास मुनि कहते हैं कि मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो कि क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कृष्ण का परिचय देते हुए वेदव्यास मुनि कहते हैं कि सच्चिद आनंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? सच्चिद और आनंद से बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर है। हमारा ये जो शरीर बना है कैसे बना है? पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है। इस संसार के सारे जीवात्मा जितने भी जीवात्मा है 84 लाख योनियां है, वो पंच महाभूत से बनी हुई है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इससे हमारा शरीर बना हुआ है और यह शरीर मृत्यु के पश्चात वापस इसी में मिल जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इसमें मिल जाता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वह सच्चिदानंद से बना हुआ है, आनंद से परिपूर्ण भगवान। भगवान का परिचय देते हुए वेदव्यास मुनि सच्चिदानंद रूपाया, जो कि सच्चिद और आनंद के घनीभूत स्वरूप भगवान कृष्ण। तो कृष्ण बहुत सुंदर है, इस बात को वेदव्यास मुनि बताते हैं। और साथ साथ में कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सुंदर होता है इस संसार में, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई सामर्थ्य ना हो, कोई कुछ काम का नहीं, ऐसा देखा जाता है। सारे जो ऐश्वर्य है एक साथ में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। किसी के पास धन है तो रूप नहीं है, किसी के पास रूप है, तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ काम का नहीं है, है ना, देखा जाता है इस संसार में। एक साथ में जो 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संग्रह वीर्य यशस्क्रिया, ये सारे जो ऐश्वर्य है 6 प्रकार के गुण है, हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं पाया जाता है। तो कृष्ण का परिचय जब यहाँ पे दे रहे हैं वेदव्यास मुनि, तो वहां पे बता रहे हैं कि वह सुंदर भी है और साथ साथ में उनका सामर्थ्य भी है। और सामर्थ्य कैसा है तो कहते हैं विश्वपति आदि हेतवे, वो सारे विश्व का सृजन पालन और संहार करने वाले हैं भगवान। पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और उनके अध्यक्षता में संहार भी होता है, इसलिए विश्वपति आदि हेतवे। और इतना नहीं, उनके स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है, कभी कभी व्यक्ति हो सकता है कि उसके पास पैसा भी है, सुंदरता भी है और बहुत अच्छा काम भी करता है, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर स्वभाव होता है ना। तो स्वभाव कैसा है इसका वर्णन भी करते हुए वेदव्यास मुनि कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान का स्वभाव कैसा है तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, वो तीनों ताप से मुक्त करने वाले, संसार के सारे जीवात्माओं को तीनों ताप से मुक्त करने वाले भगवान है, ये उनका स्वभाव है। तीन ताप है इस संसार में, हर एक व्यक्ति इन ताप तीन तापों से बहुत पीड़ित है। इतनी ताप क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप है। संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं ये सारे इन ताप से त्रस्त है, दुखी है। और भगवान के शरण में अगर कोई जाता है, भगवान के पास अगर कोई जाता है, तो भगवान इन तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं उस व्यक्ति को। ये तीन ताप है, आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख। अभी देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख क्या है, हद से ज्यादा बारिश हो जाना है ना, बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, प्रलय आ जाना है ना, ज्यादा बारिश हो गया, ज्यादा ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, ज्यादा सब परेशानी रहते हैं है ना। ये सारे देवता लोग ही तो करते हैं ना, गर्मी आया तो अभी कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, ठंडी आया बहुत ठंडी है, बर्फ पड़ रहा है, बारिश आया तो अभी बहुत बारिश है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, इधर जलगांव में क्यों हो रहा है इतना, यहाँ पे हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन बॉम्बे तो डूबा। तो इस प्रकार से ये सारे जो त्रास है ना, ये तकलीफ है सारे देवताओं में, जिसको आदि दैविक दुख बताया गया है शास्त्रों में। और दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को त्रास देता है, तीसरा चौथे को देता है, हम आपस में एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, रास्ते में चल रहे हैं थोड़ा आपस में थोड़ा भी टकराव हो गया तो फिर शुरू हो जाता है, हमारी प्रगति को देख के किसी को सहन नहीं होता तो पैर खींचता है, ये सारे आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक दुख हमारे लोगों से, हमारे स्वजनों से जो मिला हुआ दुख है, इस संसार के अनेक जीवात्माएं जो उनसे जो दुख मिला हमको, उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं, ये है आदि भौतिक दुख। और तीसरा है आदि आध्यात्मिक, वो क्या है, हमारे मन के द्वारा, हमारे मन के द्वारा हमको जो दुख प्राप्त होता है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया तो दुखी हो गया मन है ना, थोड़ा कोई चिल्ला दिया या डांट दिया तो मन दुखी हो गया। देखिए भक्तों, इस संसार में व्यक्ति का जो मन है ना, कहते मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया बना। इस संसार में व्यक्ति का जो मन है ना वो बांधाय विषया संगे उसका मन जो है वो विषयों से बांध देता है और निर्मुक्ता विषया बना और यही मन उसको विषयों से मुक्त भी कर देता है। ये मन ऐसा तत्व है हमारे अंदर बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया बना। अगर इस मन को हम संसार के विषयों में लगाएंगे तो विषयों में बांध देगा, लेकिन इसी मन को हम भागवत कथा श्रवण करने में लगाएंगे, भगवान की सेवा करने में लगाएंगे तो यही मन हमको निर्मुक्ता विषय बना है, मुक्त कर देगा विषयों से यही मन। तो हमारा जो मन है तीसरा जो दुख आदि आध्यात्मिक जो बोलते हैं वो हमारा मन है। हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। इस संसार में सबसे बड़ा अगर शत्रु कोई है तो हमारा मन है, और सबसे बड़ा अगर मित्र भी कोई है तो भी हमारा मन है, अगर उसको सही जगह पे लगा दिए तो। तो इस प्रकार से जो भगवान का व्यास मुनि बताते हैं कि भगवान का के शरण में अगर कोई चला जाता है तो उनका स्वभाव कैसा है, वो त्रिताप से मुक्त कर देते हैं, ये उनका स्वभाव है। एक समय की बात है, गंगा जी के तट पे सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को कथा का श्रवण करा रहे थे। जैसे ही कथा का प्रारंभ होने जा रहा था उसी समय जैसे पता चला कि सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पे अभी भागवत कथा को श्रवण कराने जा रहे परीक्षित महाराज को, तो सारे ऋषिगण सब लोग धीरे धीरे उस जगह पे एकत्रित होने लगे। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करने जा रहे सुनकर देवता भी उस गंगा के तट पे देवता भी आए, लेकिन क्या लेकर आए, हाथ में अमृत कलश लेकर आए सुखदेव गोस्वामी के पास। वर्णन है भागवत महात्म में वर्णन है, परिच्छिते कथा वक्तुं सभायां संचिते युगे सुधा कुंभं गृहत्तैव देवा तत्र समागता। परिच्छिते कथा वक्तुं, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे तो वहां पे सभायां संचिते मुने सारे ऋषिगण मुनि वहां पे एकत्रित हो चुके और साथ साथ में देवता भी, देवा तत्र समागता, देवता भी आए, लेकिन वो देवता सुधा कुंभ वो हाथ में एक घड़ा लेकर आए, अमृत का घड़ा, अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर आए सुधा कुंभ कृत्य। और उस समय देवता लोग सुखदेव गोस्वामी को वह अमृत का घड़ा जो है सुखदेव गोस्वामी को देते हैं, कहते हैं कि महाराज आप इस अमृत को ले लीजिए और लेकर इस परीक्षित को अमर कर दीजिए, लेकिन ये जो भागवत का ज्ञान है ना हमको प्रदान करिए। बिजनेस करने लगे देवतागण, हमारी बुद्धि हम भी कहीं कोई जाते हैं कथा सुनने तो बिजनेस का माइंड रहता है या श्रवण करना, ये बहुत पाप है एक्चुअली। जैसे ही इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया कि देवतागण जो है वो इस भागवत को किससे तुलना कर रहे हैं, अमृत से तुलना कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत दुखी हुए। बहुत दुखी होकर उन्होंने दुखी तो हुए लेकिन वो देवताओं को डांटने लगे, बोले तुम ये जो अमृत की तुलना भागवत से कर रहे हो, भागवत अमृत से कर रहे हो, ये भागवत जो है ना हीरे के समान है, तुम हीरे की तुलना कांच के टूटे हुए टुकड़े से कर रहे हो। देखते हैं ना कांच का टूटा हुआ टुकड़ा और हीरा, उसमें ज्यादा अंतर दिखता नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि हीरा का ये कांच के टुकड़े जैसा हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक तो भागवत जो कि हीरे के समान है तुम उसका तुलना कांच के टुकड़े से कर रहे हो, और उस समय सुखदेव गोस्वामी अपने क्रोध को व्यक्त किया, बोले कि तुम यहां से तुम लोग अभी के अभी यहां से निकल जाओ नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। क्रोध वश जब क्रोध दिखाए तो उस समय सारे देवता को वहां से भागना पड़ा। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इस बात को बताना चाहते हैं कि भागवत की तुलना हम किसी भी संसार की वस्तु से नहीं कर सकते हैं। भागवत की तुलना इस संसार की किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते हैं। बेचारे देवता गण शांति से आके कथा शुरू होने जा रहा है, बैठ के आप लोगों की तरफ कथा श्रवण करते तो सो मिल जाता भागवत लेकिन वो क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे, अमृत से देने लगे हमको सुनाइए, लेकिन उनको वो भी सुनने के लिए नहीं मिला, क्रोध का शिकार होना पड़ा और उनको भागना पड़ा वहां से। तो ये जो भागवत है एक हम इस संसार के किसी भी वस्तु से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, ये भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है इसमें भागवत। हम कथा का श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये भाद्रपद महीना जो है जिसमें भागवत की बहुत ही सुंदर महिमा और महिमा का हम शुरुआत भी कर चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है इसकी महिमा अपार है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि जो शुरुआत हुआ है पितृपक्ष, इस श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में किसी किसी ऐसे व्यक्ति का मत ऐसा होता है कि ये भागवत कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे अगर मुख्य सबसे श्रेष्ठ समय अगर भागवत कथा श्रवण करना तो ये पितृपक्ष में श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत बहुत हमको बड़ा बेनिफिट प्राप्त होता है। हम साक्षात भागवत की संगति भगवान की संगति तो करते हैं लेकिन साथ साथ में हमारे जो पितृगण हैं जो लोक परलोक को सुधार चुके हैं उनका भी हम उद्धार करते हैं। अपना तो उद्धार होता ही है लेकिन साथ साथ में इस कथा को श्रवण करने मात्र से हमारे पूर्वज का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए इसकी बहुत महिमा है, इस पितृपक्ष में भागवत कथा सुनने की बहुत महिमा है। जो ये भागवत है जिसको श्रवण करने से कुछ ऐसे लोग का मुहूर्त देश काल पात्र ये सब देखते हैं। एक्चुअली भागवत का श्रवण करना ये किसी भी मुहूर्त ऐसा नहीं कि इस काल में इस समय में होना चाहिए, ऐसा इसका कोई नियम नहीं है। कभी भी किसी भी समय इस भागवत का शुभारंभ हम कर सकते हैं, कोई इसमें समय इत्यादि देखने की जरूरत नहीं। और वास्तव में जो भक्ति कर जिस समय से हम भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, जिस समय से हम भागवत का शरण लेना प्रारंभ कर देते हैं ना, वही मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है शास्त्रों में। वो मुहूर्त भले से वो संसार के दृष्टिकोण में कर्मकांड के दृष्टिकोण में वो मुहूर्त कैसा भी हो, अगर हम भक्ति का प्रारंभ करते हैं भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो वो जो मुहूर्त है वही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है। हम जिस दिन से भक्ति प्रारंभ करते हैं श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है वो। हम देख सकते हैं रामायण के उस प्रसंग में कि एक समय की बात है कि राजा दशरथ अपने राज्य सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे और पूरी सभा लगी हुई थी। और उस समय राजा दशरथ के जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे उसी समय एक घटना घटित हुआ। वह घटना यह था कि महाराज दशरथ का जो मुकुट है वह थोड़ा से सरक गया, हिल गया। तो तुरंत ही उनके जो सेवा करने वाले दास जो भी थे वो तुरंत महाराज के पास आए और तुरंत ही कांच को लेकर महाराज के पास आए और उनके मुकुट को ठीक करने के लिए। तो महाराज मुकुट को ठीक कर रहे हैं दशरथ महाराज। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके एक बाल जो है पक चुका है, सफेद हो चुका है। तो मन में बहुत दुख हुआ उनको, राजा को मन के मन ही मन बहुत दुख हुआ। रामायण में वर्णन है कि हृदय बहुत दुख लागा बीत गयो दिन भजन बिना। ये दुख अंदर चलने लगा राजा दशरथ को, बहुत दुख लगा कि बीत गए इतना दिन बीत गया भजन के बिना। क्योंकि इस संसार में जो है ना जीव कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कब कौन मर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी जीव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए राजा दशरथ सोच रहे कि संसार में कभी भी मृत्यु प्राप्त हो सकता है, लेकिन मेरा इतना समय निकल गया, मेरे बाल भी पक चुके और मेरा भजन नहीं हुआ। ये दुख अंदर ग्लानि होने लगा राजा दशरथ को, एक ग्लानि होने लगा। वैसे देखिए भगवान किसी को ऐसा डायरेक्ट नहीं उठा रहे, कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं भगवान, है ना। ये दो तीन संकेत मुख्य है, बाल सफेद हो जाना और दूसरा साथ फिर भी शुरू नहीं करता व्यक्ति भजन, उसके बाद बाल पूरा जड़ जाते हैं, पूरा मैदान बन जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है, और उसके बाद तीसरा आंख से दिखना बंद हो जाता है, इंद्रिया काम करना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है। ये सारे संकेत ही है ना भगवान देते हैं ना कि आप शुरू कर दो भजन, ज्यादा समय बचा नहीं है अभी। लेकिन हमको टेंशन होता है, बाल सफेद देखकर हमको भी टेंशन होता है, संसार के जीव को भी टेंशन होता है, लेकिन टेंशन ये होता है कि अभी शहरों में जाना पड़ेगा, भक्ति करना है वो विचार नहीं आता है, भजन करना वो विचार नहीं आता, अभी सैलून में जाने का टेंशन होता है। लेकिन हम कितना भी व्हाइट को काला बना ले, सफेद को काला कितना भी बना ले, कितना भी अपना संसार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट जितने भी केमिकल सबको अपना ले, लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो हर एक जीवात्मा के ऊपर लागू, वो तो लागू होने ही वाला है कितना भी हम प्रयास कर ले। तो राजा दशरथ के अंदर मन ही मन बहुत ग्लानि हो कि मेरा दिन बीत गया भजन के बिना। और तुरंत ही राजा दशरथ वहां पे बैठे हुए उनके गुरु वशिष्ठ जी उनके पास गए, उनके पास गए कि प्रभु मेरा जीवन जो है ना वो भजन के बिना इतना समय बीत चुका, अब मैं भजन करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी को दशरथ महाराज पूछते हैं कि आपको एक ऐसा मुहूर्त बताइए, एक ऐसा समय बताइए जिससे मैं अपने इस राजपाट को छोड़कर भगवान के भजन और भक्ति में लग जाऊं। किससे पूछते हैं राजा दशरथ? अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि एक ऐसा समय बताइए, एक ऐसा मुहूर्त बताइए जिस दिन मैं ये जो अपना राजपाट है अपने पुत्र राम को सौंप कर मैं चला जाऊं भजन करने के लिए। तब विचार करें भक्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि उस समय वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु जी तुरंत ही उनको यह आदेश देते हैं कि तदैव लग्नम सुधिरम तदैव। हे राजन, अगर ये विचार आपके मन में आया है तो आप तुरंत ही इस राजपाट को त्यागिए और तुरंत निकल जाए भक्ति करने के लिए, और तुरंत आज का अभी तदैव लग्नम सुधिरम तदैव, अभी आप राम को बुलाइए, उसका राज्याभिषेक करिए और अपने सिंहासन पर बैठाइए और तुरंत निकल जाइए। इस बात को वशिष्ठ जी कहते हैं, लेकिन दशरथ जी क्या बोले कि प्रभु बस एक दिन का मोहलत दीजिए, एक दिन। सबको पता है कि एक दिन का मोहलत जो राजा दशरथ कहे जीवन में कैसा क्या हो गया वो आप सबको पता है। राम को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ को पूरा अयोध्या में 14 वर्ष तक दीपक नहीं जला, केवल एक दिन की मोहलत मांगने से और पूरा तड़प के मृत्यु हो गया दशरथ महाराज का। एक दिन की बात क्यों, एक दिन का मौका मोहलत चाहिए। हम भी बोलते हैं ना, हमारे प्रभु जी लोग आते हैं, बड़े गीता कोर्स करते हैं इत्यादि, बहुत बहुत प्रयास करके लोगों को पकड़ते हैं और बोलते हैं आओ जब करो भक्ति करो, तो बोलता नहीं प्रभु कल से आता हूँ, हाँ परसों से आता हूँ, नरसों से आता हूँ, नहीं इस दिन से आता हूँ। हम समय मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो समय वो व्यक्ति को कब खा जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। कभी भी भरोसा इस सांस के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस सांस के ऊपर भरोसा कब अटक जाए, कब रुक जाए, कुछ भरोसा नहीं। तो राजा दशरथ ने एक दिन का मोहलत मांगा, हालांकि गुरु जी का आदेश क्या था, तदैव लग्नम सुधिरम तदैव, अभी से तुरंत भक्ति को तुरंत छोड़ दो, राज्य को राम को बैठाओ और निकल पड़ो भक्ति के लिए। वही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, मेरे से मुहूर्त क्यों मांग रहे हो? भक्ति करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जिस समय से भक्ति प्रारंभ कर दे वही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है। तो उस समय एक दिन की मोहलत और राजा दशरथ को कितना भारी पड़ा, ये बात आप समझते हैं। तो जिस समय से हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं या भगवान के विषय भगवान के अपने आप को समर्पित करते हैं या उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, वही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो नैमिषारण्य के ऋषि नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं शौनक इत्यादि और सूद गोस्वामी से बहुत सुंदर सा प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रश्न उत्तरी से ही भागवत का शुभारंभ होता है। नैमिषारण्य के जो सारे ऋषि थे और विशेषतः उसमें प्रधान ऋषि शौनक मुनि, वह सूद गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं इह घोरे कलो प्रामो जीवश्चासुरतांगता क्लेशा क्रांतस्य तेव सोधने किं परायणं इह घोरे कलो प्रायो जीयश्चासुरतांगता क्लेशा क्रांतस्य तस्मैव सोधने किं परागतम। शौनक इत्यादि ऋषि जो सूद गोस्वामी से प्रश्न करते हुए कहते हैं इस कलयुग के इस जीवों की स्थिति को बता रहे हैं कि इस कलयुग के जीवों का जो कि कैसी स्थिति है, वो किसी भी क्षण मर सकता है, कोई निश्चित समय नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित समय है, लेकिन वो समय हमको पता नहीं है, वो कौन सा समय है, हमको नहीं पता है। ये ऋषि गण सूद गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं और विशेष करके इस कलयुग की स्थिति को बता रहे हैं कि एक कलयुग में ना हर एक जीवात्मा जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब लगा हुआ उसके जीवन में, सबसे बड़ा रोग भाव रोग है उसके जीवन में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना माँ के गर्भ से गर्भ में बार बार आना, ये सारे चीजों का कलयुग की स्थिति को जीवों की स्थिति को शौनक इत्यादि ऋषि गण बता रहे हैं कि दुनिया भर के रोग हैं। देखिए इस संसार में अनेकों रोग है, इस संसार में अनेके जो रोग हम देखते हैं उस रोग का दवाई है, लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो भाव रोग है इसका इस संसार में कोई भी दवा नहीं है। है कोई दवा? जलगांव में मिलता है तो मुझे बताइएगा, कोई दवा नहीं है इस भाव रोग का, कि कोई दवा नहीं है। तो इस संसार में इस भाव रोग का जो सबसे बड़ा रोग जीवों को लगा हुआ है और इसका तो इस संसार में कोई दवा नहीं है, तो नैमिषारण्य के ऋषिगण सूद गोस्वामी से पूछते हैं कि एक ऐसा दवाई बताइए कि जिससे एक भाव रोग उस व्यक्ति का दूर हो जाए। सूद गोस्वामी को कहते हैं एक ऐसा कथा हमको श्रवण कराइए जिस कथा का श्रवण करने से भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्तते महान, जिस कथा का श्रवण करने से भक्ति प्राप्त हो विवेक बुद्धि प्राप्त हो और साथ साथ में वैराग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कथा का श्रवण हमको कराइए। कौन कराए? नैमिषारण्य के ऋषिगण सूद गोस्वामी को यह प्रश्न पूछते हैं, एक ऐसी कथा का श्रवण हमको कराइए जो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने वाली कथा हो, ऐसी कथा को हमको श्रवण कराइए जिससे भक्ति बढ़े ज्ञान बढ़े और साथ साथ में वैराग्य बढ़े उस कथा का श्रवण करने से। तो सूत गोस्वामी फिर से वही बात मैंने शुरुआत में बताया कि भागवत अपनी महिमा तो कभी नहीं गाता है। सूत गोस्वामी उसमें अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं क्या बता सकता हूं, मैं तो अपूर्ण हूं, अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं सूद गोस्वामी कि मैं अपूर्ण हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं क्या बता सकता हूं ऐसा कथा आपको। तो अपनी नम्रता को व्यक्त करते हुए, और वास्तव में यही महानता है बड़े व्यक्ति का, यही महानता है कि अपने आप को कभी पूर्ण मानता ही नहीं, वो अज्ञानी ही मानता है। कोई बहुत बड़ा विद्वान है कभी भी अपनी विद्वत्व को नहीं प्रस्तुत करता है, अपने आप को हमेशा अज्ञानी ही मानता है, और जहां ज्ञान मिले वहां पे वो भागता फिरता है, ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे पास पूर्ण ज्ञान हो चुका है। सूद गोस्वामी अपनी नम्रता को, और यही महानता है हमारे। अब आज संसार में क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस 60-70 किलो जो भी 50-60-70 किलो का शरीर लिए हुए और साथ साथ में 120 किलो का अहंकार है उनके पास, सबसे बड़ा रोग लेके चलते हैं अहंकार, अहंकार को साथ में लेके चलते हैं, शरीर को तो बैठाए है लेकिन अहंकार को भी साथ में बैठाए रहते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी अपनी नम्रता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं क्या ऐसी कथा को सुनाऊंगा जो कथा भक्ति विवेक ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कराए। और इस संसार, ये तीनों चीजें जिसको प्राप्त होता है ना, इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्त है, मुक्त है। मुक्ति की जो परिभाषा बताई गई इसमें भागवतों में, मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना यही मुक्ति है। ऐसा नहीं कि मुक्त होकर कहीं और जाना है, अपने स्वरूप को पहचान लेना कि हम कृष्ण के दास हैं, उस स्वरूप को जान लेना और दास का क्या काम है, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, अगर उसमें वो लग जाता है, यही मुक्ति की परिभाषा है। वह यहां रहते रहते भी मुक्त हो गया, मुक्ति रूपे स्वरूपे व्यवस्थित। इस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी अपनी नम्रता को व्यक्त करते हैं, लेकिन सौनक ऋषि इत्यादि वो तो जानते हैं कितने महान व्यक्ति है शुद्ध गोस्वामी बात, इसलिए तुरंत ही सौनक जी सूत जी की महिमा को गायन करने लगे, सिद्ध जी को महिमा को बताने लगे। चिंता मणि लोक सुखम सुद्रद्रो स्वर्ग संपदम, कहते चिंता मणि लोक सुखम कि हे शुद्ध गोस्वामी, इस संसार में अगर किसी को चिंतामणि समझते ना, पारस मणि, क्या होता है अगर उस पारस मणि को आप किसी लोहे से टच कर दो ना तो सोना बन जाता है। तो सौनक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, इस संसार में अगर किसी को चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि अगर प्राप्त हो जाता है तो इस संसार में वो व्यक्ति सुखी बन जाता है। अगर मान लीजिए हमको ये पारस मणि प्राप्त हो गया, तब तो हम भंगार की दुकान पे जाकर लोहा खरीदते रहेंगे, भंगार की दुकान पे ही जाएंगे, वो सही लोहा भी नहीं खरीदेंगे, भंगार की दुकान पे ही जाएंगे, भंगार खरीद के लाएंगे और उसको सोना बनाते रहेंगे। तो इस संसार के किसी व्यक्ति को, सौनक जी बता रहे कि संसार के किसी व्यक्ति को अगर चिंतामणि प्राप्त हो जाता है, पारस मणि प्राप्त हो जाता है, तो इस संसार के सुख को प्राप्त कर सकता है, कर लेता है सुख को प्राप्त। और किसी व्यक्ति को अगर कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाता है तो स्वर्ग संपदम, एक कल्प वृक्ष जिसको प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसको स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष, जिस कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम जाते हैं ना, कल्पना करते हैं ना, कुछ सोचते हैं ना, वो प्राप्त हो जाता है, ये इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो सब लोग स्वर्ग सुख के तो पीछे पड़े हुए हैं। तो सौनक कहते हैं कि संसार में किसी को पारस मणि मिलता है, इस संसार के सुख को प्राप्त कर लेता है, अगर उसको कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई तो स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऋषि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, आप जैसा गुरु अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वैकुंठम योग दुर्गम, वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। आप जैसा अगर गुरु किसी को प्राप्त हो जाए ना, शुद्ध गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं सौनक ऋषि, आप जैसा गुरु अगर किसी को मिल जाए तो उसको साक्षात वैकुंठ का दर्शन हो जाता है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगी लोग तपस्या करते हैं वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, ध्यान धारणा इत्यादि क्या क्या नहीं करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप जैसा गुरु अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति वैकुंठ का भागीदारी बन जाता है, वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से सौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी की महिमा को, उनके गुणों का गायन करते हैं, कई सारे बहुत विस्तार रूप में वो गायन करते हैं, मैं तो वहां पे संक्षिप्त में आप सब लोगों के सामने बताया। तो तुरंत ही शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पम्बम संसार भयनाशनम, इस संसार के सारे भयों को नाश करने वाले, सारे पाप को नाश करने वाले, सारे दुख को नाश करने वाले अगर कोई दवाई है तो वह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो इस संसार के सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। संसार भय नाशन, उसके इस संसार में जितने भी प्रकार के भय है ना, वो सब उन भयों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, अगर कोई भागवत कथा का श्रवण करता है। तो ये कथा उस गर्जना के समान है, श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करना उस जंगल में रहने वाला शेर जो गर्जना करता है ना, जब गर्जना करता है तो जितने भी छोटे छोटे अन्य जीव है वो तुरंत वहां से भाग लेते हैं। इसी प्रकार से जब इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है, भागवत कथा की गर्जना होती है, तो उस समय हमारे अंदर जितने भी छोटे मोटे जो भी पाप पड़े हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी कथा का जो श्रवण करता है उसको भक्ति विवेक वैराग्य तीनों चीज उसको प्राप्त हो जाता है, जो सुगुण कृषि इत्यादि प्रश्न पूछे थे, इस संसार के स्थिति को व्यक्त किए थे उन्होंने सूद गोस्वामी से। तो ऐसी कथा अगर कोई सुनता है तो ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। एक बार आप देखिए, विचार करिए कि इस संसार में एक सबसे पवित्र जल है जिसको हम गंगा जल कहते हैं, तीनों लोक को पावन करने वाली गंगा जल है। कभी आपने विचार किया कि गंगा जल में तीनों लोक को पावन करने की शक्ति कहां से आया? अगर आप गंगा के जल को लेकर किसी लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे तो वहां पे H2O के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। हाइड्रोजन 2% और दो भाग और ऑक्सीजन 1%, यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला टेस्टिंग में। लेकिन फिर भी ये गंगा जो है उसके पास ऐसी शक्ति, कैसे त्रिभुवन को पावन करने वाली शक्ति है इस गंगा के अंदर, कहां से आई? कभी विचार किए? त्रिभुवन को पावन करने वाली ये गंगा है, तो कोई साधारण जल नहीं है। लेकिन अगर भौतिक दृष्टिकोण से उसको टेस्ट किया जाए तो एक साधारण जल है वो, लेकिन फिर भी त्रिभुवन को पावन करने की शक्ति है उसके अंदर। क्यों है? क्योंकि जब भगवान वामन देव जब इस पूरे ब्रह्मांड को माप रहे थे तो उस समय एक कदम में उन्होंने नीचे के सारे लोगों को, अतल वितल तरातल जो भी है ना, सारे लोगों को, नीचे के सारे सातों लोगों को उन्होंने माप लिया एक पग में। दूसरे पग में वो ऊपर के सारे लोग को मापे और सत्य लोक से ऊपर जब मापे दूसरे लोक में ही उनके चरण का, भगवान वामन देव के चरण का जो अंगूठा है ना, उस बिरजा को जाकर टच करता है, वहां पे छिद्र हो जाता है और वहां से वो जल जो है, बिरजा नदी का जो जल है, भगवान के चरणों के को स्पर्श करते हुए इस धरातल पे आया। तो गंगा में संसार के सारे जीवों को, त्रिभुवन को तारने की शक्ति कहां से आया? भगवान के चरण कमल का स्पर्श करने से आया त्रिभुवन को तारने की शक्ति। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो गंगा में भगवान के चरण कमल को छू लेने से त्रिभुवन को पावन की शक्ति उसको प्राप्त हो गई, तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा जो कि भगवान के मुख से निकला हुआ है, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, भगवान के मुख से निकला हुआ है, ऐसे श्रीमद् भागवत जो कि भगवान के मुख से निकला हुआ है वो त्रिभुवन को पावन कर दे, इस संसार के सारे लोगों के कष्ट को नाश कर दे, इसमें क्या संशय है? जब चरणों की इतना महिमा, तो मुख से निकला हुआ जो ये वेद है, ये भागवत महापुराण है, उसमें कितनी शक्ति होगी? ये जो भागवत है ना, यह भगवान के मुख से निकला हुआ है। भगवान के मुख से भागवत जो निकला ना, इसमें 100 करोड़ श्लोक थे, 100 करोड़ श्लोक है इस भागवत में। लेकिन इस कलयुग के जीवों की स्थिति को देखते हुए, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या विवादता, बुद्धि मंद है, उसका भाग्य भी मंद है, सब कुछ खराब है इस संसार की जीव का सब कुछ। तो इस संसार के जीवात्माओं को देखते हुए, संसार के लोगों को देखते हुए वेद व्यास जी ने इस सत कोटि 100 करोड़ का जो भागवत था, इसको 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, 18,000 उसको सार के रूप में उन्होंने दे दिया हमको वेद व्यास जी ने। नहीं तो हम कहां 100 करोड़, ये 18,000 भी हमारे लिए कैसा लगता है ना? लेकिन तो ये है कृपा, वेद व्यास जी की कृपा कि संसार के जीवात्माओं को देखते हुए उन्होंने छोटा कर दिया, कम कर दिया। और ये भागवत जो है ना, भागवत को पंचम वेद बताया गया है, श्रीमद् भागवत को पंचम वेद। चार वेद है, कौन कौन से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है। ये चार वेद चार वेद है लेकिन भागवत महापुराण को पंचम वेद बताया गया है। इतिहास पुराणम पंचम वेदा नाम वेदम, ये जो भागवत है ये पंचम वेद है। इस सारे जो चार वेद है इसका सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया ये जो पंचम वेद श्रीमद् भागवत। जो श्रीमद् भागवत अगर वेद अगर वृक्ष है तो ये जो भागवत है ये क्या है, वृक्ष का फल है। वृक्ष का फल देखिए, एक वृक्ष में पत्ते होते हैं, डालियां होती हैं, पेड़ होता है पूरा, लेकिन महिमा किसकी है, उस वृक्ष के फल की महिमा है ना। हम वृक्ष के फल को रसस्वादन करते हैं है ना, पत्ते को नहीं खाते हैं, डाली को नहीं खाते हैं। हालांकि पत्ते और डाली की भी महिमा है, क्योंकि वो नहीं रहता तो फल नहीं होता, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ किसको बताया गया है, फल को बताया गया है। तो वेद जो है ना, भले से वेदों से ही श्रीमद् भागवत आया, वेदों को सार के रूप में प्रस्तुत किया गया श्रीमद् भागवत के रूप में, लेकिन फिर भी ये श्रीमद् भागवत बहुत महत्वपूर्ण है, रसमय ग्रंथ है, वो सार है, वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवतम। और इसमें भागवत में तो यह भी बताया गया कि पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस के समान है, केवल कैसा कैसा आम है, वैसा आम है जिसके अंदर गुठली नहीं है, क्या है, केवल जूसी जूस भरा हुआ है, और केवल हमको क्या करना है, उसको पीना है, बस अपने कानों से उसको पीना है, बस कोई तकलीफ नहीं। इस संसार में जितने भी साधन है ना, इस संसार में जितने भी साधन है वो बहुत तकलीफ देने वाले साधन है, लेकिन भागवत का कथा का श्रवण करना एक जूस पीने के समान है। अभी सोचिए यहां पे आप बैठ के श्रवण करने को मेहनत लग रहा है, नहीं मेहनत है, केवल सुनना है, सुनना है, उसको पीना है बस, और परम गति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, और इसकी महिमा अपार है। तो ये जो भागवत है ये वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल है, जिसके अंदर गुठली नहीं है, केवल जूसी जूस भरा हुआ है। एक कथा मुझे स्मरण आया कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण घर पे आया तो उनकी पत्नी ने बहुत सुंदर सा पकवान बनाया हुआ था, और पकवान बनाया बहुत कई घंटों मेहनत करके, सुंदर फीस्ट का आयोजन करके बहुत सुंदर सा फीस्ट रखा हुआ था, बना के कई बहुत सारे आइटम बना के रखे हुए थे। और ब्राह्मण देवता जब आए अपनी दिनचर्या समाप्त करके घर पे, तो उस समय पत्नी ने उनको क्या किया, भोजन परोसा, सुंदर सा प्लेट लगाया और भोजन परोसा, और परोसा, और ब्राह्मण देवता बैठे खाने के लिए, और पत्नी एक हाथ से भोजन परोस रही है, दूसरे हाथ से पंखा झेल रही है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण देवता को उनकी पत्नी खिला भी रही, परोस भी रही है, और साथ साथ में पंखा भी झेल रही है। थोड़ी देर के बाद खिलाते खिलाते उनकी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा ब्राह्मण से, पतिदेव आप आने वाले 3 घंटा से खाना मैं पका रही थी, और आप आए तो आपको परोसा मैंने, और परोस भी रहे और साथ साथ में हवा भी झेल रही है, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है। तो ब्राह्मण देवता खाते खाते चबाते चबाते गुस्से में बोल रहे कि चबा कौन रहा तेरा बाप। ये देवता को चबाने में तकलीफ हो रही थी। चबाने में मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी साधन है भगवत प्राप्ति के लिए ये सब चबाने के समान है, उसमें कष्ट है, लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा साधन है भगवत प्राप्ति के लिए जिसमें कोई कष्ट नहीं है, केवल मात्र और मात्र जूस उसको पीना है केवल, और कोई कष्ट नहीं है। सारे साधन जो है, कोई अगर व्यक्ति बहुत ध्यान कर रहा है, कभी कभी होता है ना हमको ध्यान, ये ध्यान योगी है, ध्यान कर रहा है, दिन भर ध्यान करता रहता है, लेकिन ध्यान हो नहीं सकता है। अगर वो कोई व्यक्ति बोलता है मैं ध्यान करके ध्यान कर रहा हूं, ध्यान योगी हो, इस समय काल में वो संभव ही नहीं है, वो झूठा है, क्योंकि ध्यान हो ही नहीं सकता है, ध्यान नहीं हो सकता, और वो ये साधन है नहीं इस कलयुग का। भागवत में बताया गया कृते यद धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तना। कृते यद धायतो विष्णु, ये जो ध्यान करना है ना, ये सतयुग का साधन है। सतयुग में लोग ध्यान करते थे और सतयुग में लोगों की अवधि जीने का भी बहुत ज्यादा होता था और ध्यान करके वो भगवत की प्राप्ति करते थे। कृते यद धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में क्या करते थे, यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन आज इस कलयुग में यज्ञ करना भी संभव नहीं है। हम यज्ञ करते हैं लेकिन पवित्र वस्तु नहीं मिलता है और वो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता है। यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण कहां रह गए हैं? शुद्ध ब्राह्मण नहीं है कोई भी, हर एक कोई पान तमाकू गुटखा खाते वाला ब्राह्मण बच गया, कहां है? कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब लोग शूद्र है, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो जहां पे ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है और शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ करते हैं उसमें द्रव्य की आहुति दिया जाता है, तो जब द्रव्य भी नहीं है पवित्र, ब्राह्मण भी पवित्र नहीं है, तो ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? एक कलयुग में संभव ही नहीं है यज्ञ करना। कोई बोलता है कि यज्ञ करके हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, ये भी झूठा, हो नहीं सकता है। कृते यद धायतो विष्णु त्रितायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्या, द्वापर को जो साधन था वो भगवान का सेवा पूजा करके, आरती अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करके लोग भगवान की प्राप्ति करते थे, वो भी इस ये साधन नहीं है इस कलयुग का। तो प्रश्न होता है क्या साधन है कलयुग का? तो कलौ तद हरि कीर्तना, केवल एकमात्र साधन है भगवान के नामों का कीर्तन करना और भागवत कथा को सुनना और भागवत भगवान की सेवा करना, यही एकमात्र साधन है भगवान के गुणानुवाद कीर्तन करना। तो इस प्रकार से जो अनेक जो साधन है वो सब साधन फेल हो जाते हैं भागवत कथा को श्रवण करने से। सब कठिन है, बड़ा परिश्रम है, लेकिन कथा सुनने में कोई भी परिश्रम नहीं है। इस जीवों को तारने के लिए एकमात्र साधन है, इस त्रिताप से मुक्त होने के लिए एकमात्र साधन है भगवान का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सेना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन और भगवान के नामों का श्रवण करना, उनकी कथाओं का श्रवण करना ही एकमात्र सुगम साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। तो हमने सुना कि जी किस प्रकार से जो गंगा जी है भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए इस संसार उनके अंदर जो शक्ति है संसार के जीवों को पावन करने के लिए वो भगवान से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भगवान एकमात्र भगवान उनके नामों का श्रवण करते हैं, उनके कथाओं का श्रवण करते हैं तभी प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो एकमात्र यही साधन है कि हम उनकी कथाओं का श्रवण करें और उनके नामों का कीर्तन करें। तो इस प्रकार से भगवान का नाम ही देखिए भागवत भागवत जो शब्द है हमने बहुत सुनते हैं ना भागवत 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 हो रही है यहाँ पे भागवत हो रही है वो भागवत शब्द भागवत का जो अर्थ ही हम समझेंगे ना तो भा जो है भ शब्द है भागवत का मतलब वो भक्ति प्रदान करने वाला है जिसका श्रवण करने मात्र से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाता है। भगवत एक्चुअली भागवत को श्रवण करना मतलब भगवान की भक्ति करना यही भक्ति है श्रवण करना ही भक्ति है। ऐसा नहीं कि भागवत का हम श्रवण करेंगे और उसके बाद कुछ कार्य करेंगे वो भक्ति है ऐसा नहीं भागवत का श्रवण ही भक्ति है क्योंकि भागवत जो है भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान अपने आप को इस भागवत के रूप में विस्तार किए हुए अपने आप को भागवत में डाल दिया भगवान ने। तो अब जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो साथ साथ भगवान के संग करते हैं। तो भव मतलब भागवत का भव मतलब भक्ति प्रदान करने वाला और गव मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला। अगर हम भागवत का श्रवण करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको। यही प्रश्न था ना सौनक इत्यादि ऋषि का सूद गोस्वामी से एक ऐसी कथा सुनाइए कि ज्ञान वैराग्य विवेक ये तीनों चीज प्राप्त हो जाए। इस संसार के जीवों का कल्याण तभी हो सकता है जब उसको ये तीन चीज प्राप्त होगा ज्ञान विवेक और वैराग्य। और केवल एकमात्र केवल एक ज्ञान ये तीनों चीजें एकमात्र और एकमात्र केवल भागवत से प्राप्त हो सकती है। तो ग शब्द का अर्थ है ज्ञान प्रदान करने वाला और भाग वह मतलब व्यक्तित्व को देने वाला व्यक्तित्व को प्रदान करने वाला। आज संसार में कितने मनुष्य हैं कितनी योनियां हैं लेकिन किसी के पास व्यक्तित्व नहीं रह गया। आप विचार करिए भक्तों कि एक एक जानवर को ये नहीं कहना पड़ता कि तुम जानवर बनो है ना। वो जानवर है कुत्ते को ये नहीं कहना पड़ता कि तुम कुत्ते बनो अरे वो कुत्ता है ना।
एक गाय को यह नहीं कहना पता कि तुम गाय बनो, वो गाय है, लेकिन एक मनुष्य को यह कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य नहीं है वो, उसकी कार्य जो है, जो कार्य कर रहा है वो पशुओं वाला कार्य कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणा, ये चार मनुष्य अगर इस जीवन में, अपने मनुष्य जीवन में जो कि बहुत दुर्लभ है, इस मनुष्य जीवन का प्राप्ति जो है ना बहुत ही दुर्लभ है, अगर इस मनुष्य जीवन को हम सही रूप में नहीं बिताए, शास्त्रों के अनुसार नहीं बिताए, तो निश्चित रूप से हम वापस पुनरअपि जन्मम पुनः, लेकिन वो कौन सा गर्व मिलेगा वो भरोसा नहीं है। ये मनुष्य जीवन मिला है अभी, लेकिन हम अगर मनुष्य की तरह जीवन को यापन नहीं किए तो कौन सा अगला जीवन मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं, वो कौन सा गर्व मिलेगा हमको वो पता नहीं। एक कुत्ते का भी जन्म मिल सकता है, एक बंदर का भी मिल सकता है, एक सुअर का भी मिल सकता है, कुछ भी 84 लाख योनियां जो है कोई भी योनि में जा सकते हैं हम। तो ये भागवत जो है ना व्यक्तित्व को प्रदान करने वाला है, उस मनुष्य जीवन का को समझाने वाला, उसको वो प्राप्त हो जाता है, व्यक्तित्व को प्रदान करने वाला है। तो मनुष्य को कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, क्यों इसका मतलब क्यों कहते हैं कि मनुष्य बनो, है ना, कोई हम कार्य किसी को डांटते तो बोलता रहे मनुष्य के जैसा काम करना, इसका मतलब क्या है, वो जानवर के जैसा काम कर रहा है, इसलिए तो उसको बोलते हैं ना मनुष्य बन। तो मनुष्य जीवन मिला है तो एकमात्र एकमात्र केवल भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है मनुष्य जीवन। अगर हम इसको लॉस्ट किए तो फिर से इस 84 लाख के चक्कर में अगर फिर से फंस जाएंगे हम, तो इसको कभी भी हमको व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। तो वह शब्द का अर्थ है कि व्यक्तित्व प्रदान करने वाला, और त लास्ट में त शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला, और एक तो आचार्य इसका अर्थ ये भी करते हैं कि तारने वाला, ये जो भाव सागर से तार दे उसको भागवत, ये तत्व शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला और तारने वाला, इस भाव बंधन के प्रदान करने वाला। तो ऐसी भागवत कथा का जो हम श्रवण करने का प्रथम दिवस में हम श्रवण किए भागवत की महिमा के विषय में, तो समय 5 बजे का है ना, क्योंकि दूसरे भी प्रोग्राम चालू करना है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग समय से अगर आए, जो भी जितने भी लोग हैं अगर समय से आए और साथ साथ में और भी लोगों को लेकर आए, समय से अगर हम शुरू करें कथा तो हम समय से समाप्त करें, मेरा इच्छा है कि हम समय से शुरू करें और समय से समाप्त करें, है ना। तो ये भागवत जो है बहुत ही विशेष तिथि में हम इसको श्रवण करने जा रहे हैं पितृपक्ष में, ये पितृपक्ष का बहुत महिमा है जिसका हम श्रवण करेंगे आगे के सत्र में, कि ये हमको श्रवण करने से किस प्रकार से हमारे पितरों का भी उद्धार होता है, कैसे उनको ये प्राप्त होता है हमारे पितृजन को भी, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना ना बहुत जरूरी है हम मनुष्यों के लिए। देखिए जो हमारे पितृजन हैं इस शरीर को त्यागने के पश्चात, आप जानते हैं इस सब लोग भली बात इस बात को जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में रहकर अगर पाप करता है तो अधोलोक में जाएगा, और जो पुण्य करता है वो ऊपर के लोगों में जाएगा, ये सब लोग जानते हैं, है ना। पाप कोई करता है तो उसको भी मालूम पाप का जो फल है वो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, और पुण्य का जो फल है वो भी जानते हैं कि पुण्य का फल मतलब सुख की प्राप्ति होगा, हाँ ऊपर के लोग की प्राप्ति होगा। तो जो व्यक्ति पाप करता है उसको अधोलोक में जाना पड़ता है, जो लोग पुण्य करते हैं उसको ऊपर के लोगों में जाना पड़ता है। तो पाप, जो कोई भी पाप करता है या फिर इस मनुष्य जीवन में मनुष्य शरीर में रह के भगवान का भक्ति नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसको अधोगति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दुराय नहीं है, ये शास्त्र सिद्धांत बातें हैं, शास्त्र के सिद्धांत बातें हैं। लेकिन उसको अधोलोक की प्राप्ति जब होती है तो आप सभी को ज्ञात है कि उसको एक एक वेदना दिया जाता, तकलीफ दिया जाता है, क्योंकि पाप किया है ना, क्योंकि उसको मनुष्य शरीर मिला था, तो एक बहुत बड़ा मौका मिला था जिसका उसने दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया उसने, तो उसको क्या होता है, उसको यमराज के द्वारा क्या करते हैं, यमराज के द्वारा उसका जो लेखा जोखा किया जाता है और उसको क्या क्या तकलीफ दिया जाता है। लेकिन इसका डिटेल हम अलग दूसरे सत्र में करेंगे, दूसरे दिन में, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता दूं कि वो लेखा जोखा जो जहां पर किया जाता है ना, उस जगह को ही पितृलोक कहते हैं। पितृलोक जो है ना, उसी जगह को कहते हैं, अर्थात सजा मिलने से पहले का स्थान जो है ना, वेटिंग, हमारी भाषा में कहते वेटिंग स्थली, वेट करते, वहां पे उसके पाप, उसका पुण्य, जो भी है उसका गणना होता है, उसी के अनुसार फिर उसको यातना शरीर मिलता है और उसको फिर दुख भुगतना पड़ता है। लेकिन ये पितृ, जहां पे पितृ पितृलोक है, उस पितृ तो ये जो पितृ पितृलोक जहां पे पितृगण निवास करते हैं, जो वेटिंग स्थली है, अगर हमारे स्वजन अगर उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि श्राद्ध पक्ष की जो महिमा है, तो सब लोग अपने अपने पितरों को क्या करते हैं, वो भोजन प्रदान करते हैं, या फिर उनकी जब तिथि होती है तो उनको हम कुछ भोजन देते हैं जो उनको प्राप्त होता है। तब प्रश्न ये उठ सकता है हमारे अंदर कभी कि कैसे प्राप्त, हम उनको यहाँ पे भोजन देते हैं, उनको वहां कैसे प्राप्त हो सकता है। तो एक साधारण उदाहरण से समझ जाइए कि मान लीजिए आपके स्वजन, आपके परिवार में से कोई विदेश, बाहर के देश में घूमने गया है ना, वो गया था 10 दिन के टूर पे, 10 दिन के लिए गया हुआ था और वहां पे घूम रहा है, घूमते घूमते 10 दिन समाप्त हुए, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि और मैं यहाँ पे रहूं, उसकी इच्छा हुई कि बहुत सुंदर स्थान है, अरे चलो एक थोड़ा और दिन बिता लेते, और एक महीना रुकना है। लेकिन क्या वो प्लान तो करके गया था 10 दिन का, लेकिन इच्छा हुई अभी एक महीना का रुकने के लिए, तो एक महीना अगर रुकना है तो क्या है, उसको उस प्रकार का धन संपत्ति भी चाहिए ना, वो तो 10 दिन के हिसाब से लेके गया था। तो क्या करता है, अपने स्वजनों को फोन लगाता है वो कि मैं यहाँ पे एक महीना और रुकना चाहता हूँ, हमारे लिए कुछ पैसे, कुछ धन की जरूरत है, आप भेज दो। तो व्यक्ति यहाँ से कुछ एक चेक दे देता है या फिर कुछ बैंक से भेज देता है, वो उनको वहां पे प्राप्त हो जाता है। तो एक साधारण कागज पे लिखा हुआ पैसा भेजने से, डालने से वो व्यक्ति को उस देश में प्राप्त हो जाता है। तो क्या हम पितरों के लिए ये थोड़ा से, तो भगवान के द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है, अगर हम उन पितरों को कुछ अर्पण करते तो क्यों नहीं प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाता है। तो जब हम उनके लिए कुछ कार्य करते हैं ना, तो वो हमें परम प्रसन्न होते हैं वो। और मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं आपको कि पितरों का जो श्राप है ना, एक्चुअली उनका जो दुख है ना, वो हमारे ऊपर लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति उनका श्राद्ध करता है या फिर उनको कुछ प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होता है। मान लीजिए कि किसी ने भेजा और उस व्यक्ति को वहां पर प्राप्त हो गया, लेकिन वहां पे एक ही जन तो है नहीं, और भी बहुत सारे दूसरे लोग के पितर भी है। अगर उसको खाना मिला और बाजू वाले के उसके स्वजनों ने नहीं भेजा, उसको नहीं मिला, तो कितना बड़ा दुख लगता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हमारे बाजू में कोई और बैठा है और कोई आए केवल मुझे खाना परोसे और उसको पूछे तक नहीं, कैसा लगेगा, कितना दुख होता है कि हमारे स्वजन हमको नहीं दिया। और वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हमको कुछ खाना मिले, यही जो भेजा हुआ जो चीजें है ना, वही उनको प्राप्त होता है, उसी से उनका जीवन यापन होता है। और एक वेट करते हैं, जब तक उनका लेखा जोखा नहीं होता ना, तब तक वो उधर ही रहते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि कितना दिनों तक लेखा जोखा होता है, इस संसार के 500,000 साल भी बीत जाते हैं, 500,000 साल भी बीत जाते हैं, इसलिए उसका कोई गिनती नहीं है, कुछ भी हो, कितने, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग हैं ना वहां पे, कितने लोग हैं। तो यहां से दी हुई चीजें उनको प्राप्त होता है, तो जब हम यहां से भेजते तो परम प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का प्रगति होता है। आप विचार करिए, आप लोग महाभारत के उस प्रसंग में जाइए अपने आप को लेकर, कि जहां पे युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव सब लोग वन में विचरण कर रहे थे जब वनवास काल था उनका, तो उस समय पांडवों को प्यास लगा। जब प्यास लगा तो एक नदी के किनारे में एक पांडव में से कोई एक निकल के गया पानी लेकर आने के लिए। प्यास लगा तो एक निकल के मटका लेके गया कि जाकर पानी लेके आते हैं, बाकी सबको पिला के प्यास को मिटाएंगे। तो पानी लेकर गए, पानी लेने गए नदी के पास, और बहुत समय हो गया वापस आए नहीं। तो और भी दूसरे जो भाई थे वो सोचे कि कहाँ गया नकुल, किधर गया, वो आया ही नहीं अभी तक। फिर सहदेव गया, चलो मैं जाता हूँ। तो सहदेव भी पानी लेने गया, बहुत समय बीत गया, वो भी नहीं आया। फिर एक एक करके अर्जुन गया, भीम गए, सब चार के चार भाई कृष्ण महाराज को छोड़कर चारों भाई पानी लेने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया, बहुत टाइम बीत गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि पानी लेने के लिए इतना समय और चारों के चार गए, अभी तक नहीं आए, निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब जाते हैं तो उन्होंने देखा दृश्य कि नदी के किनारे चारों के चारों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी होते हैं कि क्या हो गया, क्या अपराध किया इन लोगों ने, जो कि इसी मूर्छित अवस्था में क्या पानी के अंदर विष था या पानी, लेकिन मुझे पानी पिलाए बिना कोई पानी तो पिया नहीं होगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि मेरे जो भाई है ना, ये मेरे प्रति कितना शरणागत है, तो मेरे को पिलाए इतना पानी तो पी नहीं सकते, ये हो नहीं सकता कि वो पानी पी के मूर्छित हुए हैं, क्या कारण है। युधिष्ठिर महाराज के मन के अंदर ये बहुत बड़ा प्रश्न निकला। तो ये जब युधिष्ठिर महाराज के मन में ये जो प्रश्न उठा, तभी वहां पे यक्ष नामक एक देवता प्रकट हुआ, और उस समय वो देवता ने युधिष्ठिर महाराज से 10 प्रश्न पूछा, और वो बोला कि अगर इस 10 प्रश्नों का उत्तर अगर मुझे सही सही आपने दे दिया तो तुम्हारे सारे चारों के चारों भाई जीवित हो जाएंगे, अन्यथा चारों मारे जाएंगे। विचार करिए, मैं सोचता हूं कभी कभी इस प्रसंग के ऊपर ना, कि विचार करिए कि युधिष्ठिर महाराज के उस समय कैसी परिस्थिति उनके जीवन में क्रिएट हुआ रहेगा। सोचिए, एक व्यक्ति पूछा, 10 सवाल पूछने जा रहा है, और 10 का 10 का सही उत्तर देना वो जो चाहता है ना, वो सही जवाब चाहता है, अगर एक भी जवाब गलत हो गया तो मेरे सारे के चारों भाई मारे जाएंगे। कितना बड़ा संकट युधिष्ठिर महाराज, इस संकट को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज ने बोला यक्ष से, क्या पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उस समय 10 प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, एक एक का जवाब देते हुए चलते गए, एक एक का जवाब दे रहे थे बराबर, क्योंकि धर्म के मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर महाराज एक एक के जवाब बहुत सुंदर तरीके से देते गए। वहां पे एक प्रश्न पूछा यक्ष ने, इस संसार में कह दुखी कौन है, कह दुखी, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, कौन दुखी है, जिसके पास धन संपत्ति नहीं हो दुखी है, कौन दुखी है। तो युधिष्ठिर महाराज को जब ये प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर महाराज यही इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में अगर किसी का ऋण रहता है तो वो सबसे बड़ा दुखी होता है। ऋण, श्रीमद् भागवतम में इस बात को बताया गया, देवर्षि भूतापतन ऋणाम पितृणाम। एक मनुष्य के जीवन में कई इतने प्रकार के ऋण होते हैं, देवताओं का ऋण होता है क्योंकि हमको वर्षा इत्यादि क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं, है ना, हमारे पितरों पिता का ऋण होता है, हमारे स्वजनों का ऋण होता है, ब्राह्मण का ऋण होता है, इस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का ऋण होता है। अगर कोई व्यक्ति ऋणी है तो सबसे बड़ा दुखी है संसार में। आप देख सकते होंगे, इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं, ऐसे कई लोग से हम मिलते रहते हैं कि संसार में कितने लोग हैं जिनके पास करोड़ों धन संपत्ति है लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, अगर इस संसार में धन ही सुख का कारण रहता तो क्यों नहीं इतने बड़े बड़े लोग सुखी रहते? नहीं सुख को प्राप्त है। आप उनके दिखता है कि इतने बड़े धन है उनके, लेकिन उनके पास में जाएंगे तो पता चलेगा कि उनके जीवन में कितना बड़ा दुख है। मैं हाल का ही कुछ परसों मैं वापी में जब था तो मैं एक व्यक्ति को मिला जो कि वापी में बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान है उसका, तनिष्क। तो जन्माष्टमी से पहले मैं उसको मिला था और उसको इन्विटेशन वगैरह भी दिया था, उसमें उसने काफी बातचीत किया। तो बहुत दुखी है, बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप का मालिक है, करोड़ों में ट्रांजेक्शन है, लेकिन इतना दुख है कि मैं उस दुख को व्यक्त करूंगा तो आप लोग आश्चर्य हो जाओगे कि इतना उसके जीवन में दुख है। पूरा फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स, इतने क्या क्या, ऊपर से दिखता है कि इतना बड़ा डायमंड का है, जो सोने का दुकान है, डायमंड का, इसको क्या कमी है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने अपने बहुत सारे दुखों को व्यक्त किया, क्योंकि एक व्यक्ति का जब दुख होता है ना किसी एक साधु के पास निकलता है, वास्तविक जो दुख होता है निकलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वहां से ही कुछ प्राप्त होगा हमको, जो कि हमको शांति मिलेगी। तो उन्होंने बहुत सारे अपने फैमिली और सारे चीजें को प्रॉब्लम को बताया, मैंने कुछ चीजें उनको दिया। एक्चुअली उनको बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम थे, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। तो मैंने फिर से उनके पास मिला, एक्चुअली जन्माष्टमी से एक हफ्ते पहले गया था और उसके बाद दोबारा गया, तो उन्होंने कुछ डोनेशन भी दिया, बहुत सारा डोनेशन भी दिया हमको। दूसरी बार गया, खैर डोनेशन तो एक उनका सेवा के रूप में था, लेकिन उन्होंने दोबारा मुझे वापस बुलाया। तो मैं जो चीज उनसे पहले सुना था उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ गाय माता के कुछ प्रोडक्ट को लेकर गया उनके इलाज के लिए। तो गाय माता के कुछ प्रोडक्ट को लेकर गया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि जो मेरे गाय माता में जो श्रद्धा है ना बहुत ज्यादा है। मैंने गाय माता के इस गोबर और गौमूत्र से मैं खुद लगभग कम से कम नहीं तो 20 प्रकार की मेडिसिन बनाता हूँ, मैंने उसका ट्रेनिंग लिया हूँ। तो इस गाय माता की बहुत अपार महिमा है, हम एक सत्र को करेंगे इसको, बार बार निकल रहा है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू कर दो, लेकिन करेंगे। तो मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट को ले जाके दिया, कुछ नहीं ज्यादा सा, दो तीन प्रोडक्ट को दिया मैंने, और उनको मैंने बोला कि इसको रेगुलर इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दो। उनके जीवन में दो बड़ी समस्या थे कि वो खुद एक टेंशन में रहते थे और उनकी एक बच्ची है, एक बेटी है, जो कि जन्मजात उसका बुद्धि बहुत कम है, तो उसको लेकर भी वो परेशान रहते हैं, हाइपर होते हैं ना बच्चे, वो समस्या उसका। बहुत इलाज किया बॉम्बे सूरत कहाँ बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज किया, लेकिन 15-16-17 साल बीत गया, कोई लाभ नहीं हुआ। और वो सबसे बड़ी समस्या उस बच्चे के जीवन में कि उसको रात को नींद नहीं आता है, रात को नींद नहीं आता है, जिसकी पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। तो मैंने उस बच्ची के लिए भी कुछ गाय माता का कृपा, मैं उसको कृपा बोलता हूँ, मेडिसिन नहीं, वो मेडिसिन नहीं है, वो कृपा है, गाय माता के द्वारा जितने भी उसके सामग्री प्राप्त होता है ना उसकी कृपा है, क्योंकि गाय हमारी माता है, 7 माताओं में से एक माता है गाय माता। तो इसलिए उसके किसी भी पदार्थ को हम यूज करते हैं ना तो कृपा प्राप्त होता है। माँ कभी भी नहीं चाहती कि हमारा पुत्र दुखी रहे। मैं किसी को भी वो प्रोडक्ट कुछ भी देता हूं ना, एकमात्र उसको यही बोलता हूं कि आपकी माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है, क्योंकि माँ कभी भी नहीं चाहेगी उसके पुत्र जो दुखी रहे। तो मैंने उनको कुछ दिया उस बच्ची के लिए भी। जन्माष्टमी बीता, 15 दिन बीता, और जन्माष्टमी के बाद का भी आज कितना तारीख हो गया सोच लीजिए। मैं परसों वापस उनका फोन आया कि प्रभु जी वापस मेरे को आपसे मिलना है, क्योंकि आपने जो कुछ दिया था वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है। इस 15 दिन मैंने इस्तेमाल किया और 15 दिन में ऐसा लग रहा है मुझे तो बहुत बड़ा शांति मिला, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन मेरी बच्ची के जीवन में आया। मैंने उनको कुछ नहीं, केवल गाय माता की एक बड़ी कृपा दिया था उस बच्ची के लिए कि नाक में डालने के लिए घी दिया था, घी आयुर्घी जिसको बोलते हैं, वो घी इससे बनाया जाता है कि जो गाय चरती है ना, जो विचरण करते हुए चरती है, उसके दूध से दही बनाया हुआ, और दही से जो उसको मथ कर जो मक्खन बनता है वो मक्खन से जो घी बनता है उसको आयुर्घी बोलते हैं, जो कि नाक में डालने का होता है। तो मैंने उनको ये दिया था, एटलीस्ट उस घी का 15 दिन इस्तेमाल करने से उस बच्ची को रात्रि को नींद आने लगा, सोने लगी वो। तो उसको याद करके उन्होंने वापस मुझे बुलाया, हालांकि मुझे निकलना था लेकिन फिर भी मैं गया और कुछ चीजें उनके पास खत्म भी हुए थे तो वो भी लेके गया। तो उनके पास बैठा और लगभग 1.5 से 2 घंटे चर्चा हुई और वापस शायद ये सत्र खत्म होने के बाद शायद उनके घर पे वो कुछ प्रोग्राम भी चालू करने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि संसार में कितना भी धन संपत्ति हो जाए व्यक्ति के पास, वो सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, कितना भी धन प्राप्त कर ले हो। एक संस्पर्श जा होगा दुख एवं नहीं, इस संसार का कोई भी चीज है जो कि हमको लगता है कि सुख देता है, चाहे वो कोई भी सुख हो, वो यौन सुख ही क्यों ना हो जो कि इस संसार का परम सुख मानते हैं लोग, लेकिन वो भी क्षणिक होता है। तो कोई भी इस संसार के संस्पर्श से वस्तुओं को प्राप्त करके हमको जो ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो जाता हूं, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो तुरंत ही दुख प्राप्त होता है, उससे तुरंत ही दुख प्राप्त होता है। संपत्ति आया करोड़ों में आया, लेकिन अभी समस्या क्या आ गया, अभी उसको जाने की समस्या आ गया। इतना है, कोई चोरी कर लिया तो, रास्ते में कोई पकड़ के मार दिया तो, कितनी बड़ी समस्या, एक-एक चीजें तुरंत बढ़ जाता है। तो इस संसार में कितना भी धन संपत्ति हो जाए, करोड़ों रुपया आ जाए, लेकिन उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, और वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। आप देखते होंगे कि करोड़ों रुपया रखने वाले लोग भी, संपत्ति रखने वाले लोग भी सुखी नहीं है। एकमात्र उनके जीवन में यही कारण है कि उनका ऋण है किसी न किसी का, इसलिए वो उस ऋण से जब मुक्त नहीं होता है वो व्यक्ति, तब तक सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। और ये ऋण किसी न किसी देवता या किसी न किसी व्यक्ति विशेष या हमारे स्वजन का ऋण है। ये ऋण से मुक्त होना बहुत जरूरी है, और ये ऋण से मुक्त होना है तो एकमात्र केवल भगवान का इस कथा को श्रवण करते, कीर्तन करते और जप करने मात्र से हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। केवल हरिनाम का, इस हरिनाम का आश्रय लेकर, हाँ, इस जप को करते हुए हम इन सारे ऋण से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कलो नास्ते 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 न गति रन था कोई, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते नास्ते। देखिए 3 बार बोला गया, जोर दे के बोला गया, और कोई उपाय नहीं है। कलयुग में भगवान जो है ना नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान का जो अवतार हुआ है इस कलयुग में ना नाम के रूप में हुआ है, नाम के रूप में, कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ है। जब हम नाम का जप करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, तो साक्षात कृष्ण का हम संग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में जो दुख है वो किसी न किसी ऋण के कारण जो दुख है, और वो ऋण से मुक्त हो, इस संसार के धन दौलत, इस संसार की संपत्ति या सुख से वो कभी भी उस ऋण से वो मुक्त नहीं हो सकता। एकमात्र उसको केवल भागवत का ही शरण लेना पड़ेगा, तभी हो सकता उसके उस ऋणों से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यास देव जी भागवत की महात्म्य जो बता रहे हैं कि भागवत की महिमा, जो कि सबसे बड़ा परोपकार अगर संसार में कार्य है तो भागवत का श्रवण करना या भागवत का अरेंज करना, भागवत को संपन्न करना, ये सबसे बड़ा परोपकार कार्य है। क्योंकि इस संसार के भागवत कथा के माध्यम से ही, भगवान के कथाओं के माध्यम से ही, ज्ञान यज्ञ के प्रचार से ही, क्योंकि व्यक्ति संसार में मनुष्य जीवन तो मिल गया है उसको, लेकिन वो क्यों फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति फंसा हुआ था हमको उसको धुतकारना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसको ज्ञान का अभाव है। और कृष्ण भावनामृत का ये जो आंदोलन है, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने बनाया, वो केवल एकमात्र लोगों को गीता और भागवत की शिक्षा देने के लिए, केवल गीता और भागवत की शिक्षा। क्योंकि वो व्यक्ति को शिक्षा जब आएगा ना, तो अपने आप वो सत्कर्म करेगा, अन्यथा उस सत्कर्म को नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं तो कार्य क्या करेगा। इसलिए गीता और भागवत जो है ना वो क्या है, वो मैनुअल है, एक मनुष्य जीवन। गीता जो है ना मैनुअल बुक है। आप देखिए, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, तो उसके साथ में एक बुक आता है और वो बुक में ये लिखा रहता है कि उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है कि नहीं। इसी प्रकार इस संसार में हमारे इस मनुष्य रूपी शरीर को कैसे चलाना है वो हमको गीता और भागवत सिखाता है, गीता सिखाता है हमको। क्योंकि ये जो शरीर है ना, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यंत्रारूढानि मायया, ये यंत्र के समान है। आप विचार करें कि इस शरीर को आप एक जगह पे दो चार दिन तक लेटा के पड़े रखो, देखो जंग पकड़ लेगा, फिर उठने की ताकत नहीं रह जाएगी उस शरीर के पास। क्यों? क्योंकि यंत्र का, यंत्र को अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना वो ज्यादा दिन चलता है। आप चार दिन बाइक खड़ी कर दिए, स्कूटी खड़ी कर दिए, बाद में चालू नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, चलते रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये ना, चलते रहना चाहिए तभी वो चालू रहेगा बराबर। इसी प्रकार ये जो शरीर है ना यंत्र होता है, यंत्र के समान है। अगर इस शरीर को हम चलायमान नहीं रखेंगे तो इसमें जंग पड़ जाएगा। और इस शरीर को चलायमान करने का जो सूत्र, जो बातें बताई गई ना, वो गीता और भागवत में बताई गई। और उसको जानकर, उस ज्ञान को प्राप्त करके अगर कोई अपना मनुष्य जीवन यापन करता है ना, तब जाके ये मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर रहा है। अन्यथा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ये जठर जननी का, माता का जो गर्भ है ना बहुत कष्टदायक होता है। और सबसे बड़ी समस्या कि मनुष्य के बाद अगर इसको समझ नहीं पाए ना, तो जठर तो पता ना कौन सा जठर मिलेगा। चलो मनुष्य का मिला तो और अच्छी बात है कि चलो एक और मौका, लेकिन अगर गवा दिया तो वो भी जठर पता नहीं कौन सा, 84 लाख योनिया है, उसमें 80 लाख प्रकार के जो योनिया है ना वो दूसरे प्रकार की योनिया, केवल एक चार लाख प्रकार की ही मनुष्य योनि है। इसलिए इस मनुष्य योनि का, इस मनुष्य शरीर का हमको दुरुपयोग नहीं, हमको सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग एकमात्र केवल भागवत कथा और भागवत का शरण लेने मात्र से ही इसका, इस शरीर का सही उपयोग है। अन्यथा इस शरीर जो कि जर्जरम, तुलसीकर अलवार जी कहते हैं शरीर सतसंधिम जर्जरम, रोग ही रोग है इस शरीर में। कितना भी अब कोई व्यक्ति बोलता है कि कितना मैं तो एकदम स्वस्थ रहता हूँ, मैं अपना जो रूटीन है ना बहुत सुंदर तरीके से फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा से खान पीन करता हूँ, पूरा सुबह जल्दी उठता हूँ, व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और दिन भर का जो रूटीन में मैं खान पान भी बहुत सुंदर से करता हूँ, तेल मसाला भी नहीं खाता हूँ, पूरा अपने लाइफ बहुत सुंदर से, मेरे को कोई रोग नहीं है। उस व्यक्ति को ले जाकर उसका हेल्थ चेकअप कराओ, पता चलता है कि 2-4 रोग निकलेंगे। इस शरीर जो है ना सत संधि जर्जर तुलसी का डाल कहते हैं, इसमें संधि संधि है, बहुत रोग ही रोग है, रोग ही रोग है इस शरीर में। तो इस प्रकार से अगर हम इस शरीर को हम भगवान के गुणानुवाद और भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं, तुलसी अगर हम लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमको कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति हमारा निष्ठा बढ़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। ये प्रेम जो है ना जागृत, ये जागृत क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम जो है ना सुप्त रूप से है। ऐसा नहीं है कि हम कथा श्रवण करते हैं या ज्ञान को प्राप्त करते हैं तभी ये प्रेम प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। हर एक जीवात्मा के अंदर, चाहे वो कितना बड़ा भी पापी हो, कितना बड़ा भी दुष्ट हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर ना ये जो प्रेम है ना, ये सुप्त रूप में अंदर हृदय में है, सुप्त रूप में है, सोया हुआ है, सोया हुआ सुप्त रूप में है, लेकिन इसको जागृत करना है। वो जागृत केवल श्रवण आदि कीर्तन से वो जागृत होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हर एक जीव के हृदय में नित्य रूप से है, लेकिन वो कैसे जागृत होगा? अगर हम श्रवण कीर्तन कथा करते हैं तो प्रेम जागृत होता है, जागृत होता है और फिर भगवान भगवान के विषय में जब सुनते हैं तो प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है, तब जाके हमको सही सही सत्कार में हम अपने आप को लगा पाते हैं। सत्कार है, सत्कार की वर्णन जब आता है ना, सत्कार मतलब क्या है? सत्कार का डेफिनेशन है कि जो कार्य करने से पूरे संसार का कल्याण हो। आजकल लोग सत्कार मतलब हम जो कार्य करें वही सत्कार है, सबका अपना अपना सिद्धांत बैठा हुआ है, हम ये कर रहे हैं ना वही सत्कार है। शास्त्र विधि विधवत कोई पालन करने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्र में क्या बताया गया, पुराणों में क्या बताया गया, गीता भागवत में क्या, कोई मतलब नहीं। हमने कुछ हमारे परंपरा से कुछ चलती आ रही है, वही वही हमारा सत्कार है। सत्कार का वेदों में सत्कार्य मतलब उसकी परिभाषा बताया गया है कि जिस कार्य को करने से पूरे संसार मानव जन का कल्याण हो उसको सत्कार्य कहते हैं। और इस सत्कार्य में सबसे बड़ा अगर कार्य कोई है तो वह है, क्या है वो? ज्ञान यज्ञ है, भागवत ज्ञान यज्ञ है, ये सबसे बड़ा कार्य यज्ञ। एक्चुअली यज्ञ सबसे बड़ा कार्य यज्ञ है, लेकिन यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। गीता में इस बात को भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यज्ञ दो प्रकार का होता है, एक है द्रव्य यज्ञ है, दूसरा है ज्ञान यज्ञ। सत्कार और सबसे बड़ा सत्कार क्या है? यज्ञ है। और यज्ञ भी दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है द्रव्य यज्ञ होता है और दूसरा क्या होता है? ज्ञान यज्ञ। लेकिन इस द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। इस द्रव्य यज्ञ में क्या करते हैं हम कि अग्नि में आहुति देते हैं, है ना, किसी द्रव्य का अग्नि में आहुति देते हैं, आहुति देव के उस यज्ञ का शुभारंभ करते हैं और उसका अंत करते हैं, है कि नहीं? लेकिन द्रव्य यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में व्यक्ति अपने जो बुरे कर्म है, बुरे विचार है, ये अहंकार है, इसका बलिदान देता है उसमें, और ये व्यक्ति के अंदर से जब निकल जाता है तो परम पवित्र बन जाता है और केवल एकमात्र वो ज्ञान को प्राप्त करके ही हो सकता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ है, इसका वर्णन भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं। और इस ज्ञान यज्ञ में भी भागवत महापुराण का ज्ञान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, है ना? लोग अपने अपने धारणाओं को लेकर बैठे हुए हैं, एक डाकू सोचता है मैं डाका डाल रहा हूं वही सत्कार है, ना? मैं जो कर रहा वही सत्कार है। तो हमको शास्त्रों का विचारों को, शास्त्रों की बातों को हमको पालन करना चाहिए और पालन करते हुए अपने आप को इन सत्कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि यही मनुष्य जीवन का ध्येय है। नहीं तो हम पशु के समान है, पशु के समान है। आहार निद्रा भय मथुनम च सामान्य एतत् पशु ही नराणाम, ये दोनों प्रकार के जो कार्य है ना, ये दोनों मनुष्य और जानवर में एक ही है। आहार मनुष्य भी खाता है और जानवर भी खाते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम थोड़ा अच्छा खाते हैं भाई, वो तो पूरा है उसके लिए, वो आर एक सुअर को आप रसगुल्ला तो नहीं खाएगा, उसको मल ही पसंद है, वो मल में टेस्ट आता है उसको, उसके लिए वो आहार बनाया गया है तो वो आहार खाता है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम श्रेष्ठ खाते हैं, हम अच्छा भोजन खाते हैं। जानवर खाना कॉमन चीज क्या है? खाना। तो आहार ये दोनों में एक समान है। निद्रा मनुष्य भी सोता है, जानवर भी सोते हैं, है कि नहीं? दोनों सोते हैं। निद्रा हम बोल सकते होंगे कि हम तो भाई अच्छा सा सोफा लगा के, अच्छा सा गद्दा बना के उस पर सोते हैं, और कुत्ता तो रोड पे सोता रहता है। आप कुत्ते को सोफे पे सुलाओ तो नींद नहीं आएगा उसको बराबर उसके लिए वही जगह श्रेष्ठ है, उसको वही अच्छा लगता है जहाँ पे सोता है। कॉमन है सोना, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, एक चीज कॉमन है। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, कॉमन है। आहार निद्रा भय, वो भी भयभीत रहता है, कोई आके मार दिया तो हम भी भयभीत रहते हैं, कब कोई किसी का सटका क्या हुआ कुछ पता नहीं, कब मारे जाएंगे कुछ पता नहीं, हमको भी भय रहता है। अपने जीवन का हर एक, अपना जीवन हर एक व्यक्ति को प्रिय है, हर एक व्यक्ति को प्रिय है अपना जीवन। तो वो भी खाता है, वो भी सोता है, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, आहार निद्रा, हम भी भयभीत रहते, वो भी भयभीत रहता है अपने जीवन रक्षा के लिए। आहार निद्रा भय मैथुना, वो भी संभोग करता है बच्चे प्राप्ति के लिए, हम भी संभोग करते हैं बच्चे प्राप्ति के लिए। ये चारों कार्य शास्त्रों में वर्णन है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। ये चारों चीज जो है मनुष्य और जानवर में समान है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य कहलाता है और जानवर जानवर कहलाता है। मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। एकमात्र ये चारों चीज तो समान है, सामान्य एतत् पशुभिः, चारों एक समान है, लेकिन मनुष्य धर्मो ही एको अधिको विशेषो। मनुष्य मनुष्य इसलिए कहलाता है कि एक धर्म एक ऐसी चीज है जो कि कुत्ता और जानवर नहीं कर सकते हैं। कुत्ते को आप प्रीचिंग करो मंदिर आने के लिए नहीं आएगा, वो आएगा वो नहीं आएगा। जानवर को बोलो भाई कल मंदिर आ जाना, संडे फेस्ट प्रोग्राम है, आएगा नहीं नहीं आएगा वो। और आग भी गया गलती से ना, हम उसको बना देंगे नहीं आ रहा। धर्म के विषय में एकमात्र जिज्ञासा अगर कोई कर सकता है ना, वो केवल मनुष्य। इसलिए मनुष्य मनुष्य कहलाता है, क्योंकि अथातो ब्रह्म, गीता का शुरुआत आसाम को शुरू होगा ना, गीता को शुरू हो रहा है ना आसाम को, उसका शुरुआत यही है। हम दुख को क्यों भोग रहे हैं हम दुखी क्यों है हमारे, क्योंकि हम प्रश्न ऐसा नहीं करते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ये प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं दुखी क्यों, मैं सारा अच्छा काम करता हूँ फिर भी दुख मेरे ही पास क्यों आते हैं, मैं तो अच्छा कार्य करता, कोई बुरा काम करता है फिर भी दुख मिलता है हमको, ये क्यों है? इतना मैं अच्छा हूं लेकिन फिर भी दुख हमको ही क्यों प्राप्त होता है? ये सारे प्रश्न, मैं कौन हूं, उसको जानना और उसको जानकर काम में लगना, ये सारे जो प्रश्न है ना, इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अपने आप में, अपने आप के विषय में जिज्ञासा अगर कोई करता है, प्रश्न करता है ना, था तो ब्रह्म जिज्ञासा उसको बोलते हैं। और यही एक चीज मनुष्य कर सकता है और जानवर नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य मनुष्य है और जानवर जानवर है। अगर एक चीज अगर मनुष्य छोड़ दिया तब तो गया काम से, इतना बहुत दुर्लभ ये शरीर मिला था और बहुत आसानी से उसको उसने गवा दिया, नहीं समझ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एक ज्ञान का अभाव है, ये ज्ञान हमको, इसलिए प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि एक गीता का जो वितरण है, गीता का ज्ञान है, ये शास्त्रों का जो ज्ञान है ना, हर एक जीवात्मा के पास पहुंचना चाहिए। एन तेन प्रकार किसी भी माध्यम से उसको खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, लेकिन गीता और भागवत को बताओ, क्योंकि ज्ञान ही उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ज्ञान, उसको ज्ञान पहुंचाना है। इसलिए ये इतनी बड़ी जो संस्था है ना, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है लोगों को सही ज्ञान वितरित करना, सही ज्ञान देना लोगों को। हम अनेकों चीजें देखते होंगे कि ये है बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, सारा का सार एक ही है, इस संसार के लोगों को ज्ञान को प्रदान करना, सही शिक्षा देना, ताकि वो अपना मनुष्य जीवन अच्छा से बिताए। मनुष्य जीवन केंद्र बिंदु भगवान को बनाए, कुछ करना नहीं भक्तों, बहुत आसान है। केवल एकमात्र, कोई बोलता अरे महाराज आप लोग तो ठीक है छोड़ के मंदिर में बैठ गए हो, मंदिर में सेवा, हमारा तो इतना बड़ा फैमिली है, बिजनेस है, धंधा है, ये वो है, सब क्या क्या गिनाते हैं लोग। मैं तो ये बोलता हूं कुछ मत छोड़ो, एकमात्र अपने घर में सब कुछ करते हुए एकमात्र केंद्र बिंदु कृष्ण को बना दो, भगवान को केंद्र बिंदु घर के अंदर बना दो, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। क्योंकि झगड़ा क्यों होता है पता है? मैं और मेरा, मैं बोलूंगा वो होना चाहिए, वो बोलते नहीं मैं बोलूंगा वो होना चाहिए। पति बोलता है कि आज गर्म पानी चाहिए मुझे, पत्नी नहीं मैं ठंडा ही लूंगी, एक दूसरे को मैं, अहंकार अहंकार ये बहुत व्यक्ति को नाश कर देता है। और सब घर के अंदर जो झगड़ा है ना, ये मैं और मेरा के अलावा और कोई कारण नहीं है। वो अपना चलाना चाहता है, बाप अपना, माँ अपना चलाना चाहता, पुत्र अपना चलाना चाहता है, सब लोग अपना अपना चलाना चाहते हैं, तो झगड़ा तो होगा ही ना। लेकिन केवल एकमात्र ये शिक्षा से, जो शिक्षा कृष्ण भावनामृत आंदोलन दे रहा है, जो शिक्षा, उस शिक्षा देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि केंद्र बिंदु भगवान को बनाया जाए। और जो भी जीवन में कार्य करे, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी कार्य, धंधा, व्यापार, नौकरी, कोई भी कार्य करो, एक ही माइंड में रहना चाहिए, मैं केंद्र बिंदु घर में कृष्ण है तो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। लोग बोलते पत्नी बच्चे के लिए कर रहा हूँ, पत्नी बच्चे के करने में बड़ी समस्या है। सोचिए ना, पत्नी बच्चे को कर करके बाद में लात मार के बाहर भगाए जाते हैं, वही बेटा बाद में लात मारता है और वृद्धाश्रम में चला जाता है अंत समय बिताने के लिए। अगर आपने जीवन भर उसके लिए अपना जीवन दे दिया तो उसका कर्तव्य तो बनना चाहिए ना आपका अंत समय में सहयोग देने का, लेकिन नहीं देता है, क्योंकि कोई नियम ही नहीं। हमने अपने मनगढ़ सोच विचार करके किया उसका सेवा। हम केंद्र कृष्ण के लिए करें, भगवान को केंद्र बिंदु घर में बनाए। नौकरी कर रहा हूं, महीने का जो पैसा मिलेगा ना वो मैं भगवान को अर्पण करूंगा। मैंने बोला मंदिर मिला के सब दे देना। घर के अंदर केंद्र बिंदु बना दिया ना घर के अंदर, तब घर में सेवा करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मंदिर में नहीं देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। तो केंद्र बिंदु में ये बात को बताना चाह रहा हूं कि ज्ञान प्राप्त होने से वो व्यक्ति अपने घर के अंदर केंद्र बिंदु भगवान को बना लेता है। जब भगवान के लिए केंद्र बिंदु भगवान बन गए ना, तो उस घर के सारे सदस्य ना क्या करेंगे, मैं उनके लिए कर रहा हूं, मैं उनके लिए कर रहा हूं, मैं उनके लिए कर रहा हूं। आप विचार करें वो प्रसंग रामायण का, जहां पे कि सेतु बंध, इतना बड़ा सेतु का निर्माण किया गया, समुद्र में सेतु को बांधा गया है ना। तो वर्णन ऐसा आता है कि हर एक ने सेवा किया, जितने भी होने थे, बंदर, मनुष्य, गिलहरी, सब लोगों ने सेवा किया। यहां तक कि जब सेतु बांधने निकले ना, तो उस समय समुद्र के अंदर जितने भी जीव थे ना, सब लोग सेवा में लग गए, सब लोग सेवा में लगे थे, सब लोग मदद करने लगे सेतु का बांधना, भगवान की सेवा, क्योंकि सेवा करना चाहते थे भगवान का। लेकिन 84,00,000 यूनिया एक साथ में वहां बह सेवा करते हुए, फिर भी किसी के अंदर क्लेश नहीं है। अब क्लेश का वर्णन सुने, उस सेतु बंध में मारा मारी हो गया है। बहुत सारे निर्माण होते हैं, गवर्नमेंट चालू करती है, इतने झगड़े हो जाते को स्टे लग जाता है, ये वो खा गया पैसा, तो ये पैसा खा गया, वो पैसा खा गया, है ना। कितनी समस्या, कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू होता है कितने झगड़े हो जाते हैं। ये इतना बड़ा समुद्र के अंदर पुल बंधने जा रहा है और वहां पे सारे जीव, सब लोग सेवा किए, सब लोग पुल बांधे, लेकिन झगड़ा का वर्णन रामायण में नहीं है। क्यों नहीं है बताए? क्योंकि एकमात्र केंद्र बिंदु थे वो भगवान राम थे वहां पे, एकमात्र केंद्र बिंदु राम, इसलिए कोई कलह नहीं हुआ, कलह का वर्णन नहीं है। जब अपने जीवन में, अपने घर के अंदर हम केंद्र बिंदु भगवान को बना लेते हैं, तो वहां पे किसी भी प्रकार का कलह हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं उठता है। और यही शिक्षा हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमको दे रहा है, यही शिक्षा दे रहा है, यही ज्ञान प्रदान कर रहा है। और वो व्यक्ति जब पूरा फैमिली मिलके, देखिए मैं ये नहीं बोला कि धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, कुछ बोला नहीं, क्या बोला, घर के अंदर केंद्र बिंदु किसी और को बना दो, भगवान को बना दो, यही बोला। केवल बिजनेस धंधा करो, अरे पैसा क्यों कमाते हैं लोग, हैं सुखी से रहने के लिए ना, कि सुख मिले हमको, अंततः उसका छानबीन कर दिया जाएगा तो हम पैसा कमाते खाने के लिए, है ना। क्योंकि खाए नहीं तो शरीर चलेगा नहीं, खाने के लिए, सुख भोग करने के लिए। और खाते, प्रश्न उठे, खाते क्यों है, कमाने के लिए। खाते क्यों है, कमाने के लिए। खाना, सोना, कमाना, खाना, सोना, कमाना, एक व्यक्ति का रूटीन देखिए। सुबह उठता है वो, नौकरी, नहाता धोता है और खा पी के नौकरी पे जाता है, पूरा दिन काम करता है, शाम को आता है वापस सोता है, फिर से सुबह उठता है, फिर से नौकरी पे जाता है, आता है, खाता पीता, सोता है, बस यही जीवन है, यही जीवन है। तो ये कभी बंद शरीर है तो मैं बोला ना यंत्रारूढ़ानि माया, ये शरीर यंत्र के समान, इसको हम तो रोक सकते ही नहीं, अगर हम चाहे भी ना कि हम घर पे बैठे, हमारे पूर्वजों ने इतना बैंक बैलेंस कर दिया ना, हम घर पे केवल सोएंगे सोफा पे। आप सो के देखिए, चार दिन बाद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यंत्रा रहे, सब तरह से हम सब तरह से फंसे हुए एक्चुअली, इसलिए हमको इस सबसे निकलना है देखिए। और एकमात्र हम निकल सकते केवल केंद्र बिंदु भगवान को बना ले तो उससे निकल जाएंगे। करेंगे दिनचर्या वही वही करना है। अरे कमाया मिला 10,000 रुपया, क्या 10,000 मिला तो उसे क्या, जो भी कुछ लाते घर में सामान ही खरीद के लाते ना, उसको अर्पण करो, केंद्र बिंदु बनाया तो अर्पण करो, प्रभु आपके लिए किया मैंने, भोग लगा दो, खाना बनाते भोग लगा दो, नया वस्त्र लाए मैं इसको पहनूंगी आपकी सेवा करने के लिए, ऑफर कर रहा हूं आपका प्रसाद लेके मैं इसको पहन के सेवा करूंगी। केवल अपने मनोविचार को चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि मंदिर में जो फुल टाइम बन गए उनके लिए आसान, हमारे लिए तकलीफ है, हमारे मन के अंदर तकलीफ है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम खुद नहीं क्लियर करना चाहते हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। और एकमात्र केवल केंद्र बिंदु हम भगवान को बना लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है ना वो मनुष्य जीवन हो जाएगा। मैं अभी भी बोला ना, मनुष्य को मनुष्य बनना बोलना पड़ता है, जानवर को नहीं बोलना पड़ता है ना, एक बड़ी समस्या है। तो एकमात्र है इसी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से ही ये संभव हो सकता है कि जो हम जिस क्लेश से जो हम मुक्त होना चाहते हैं, इस संसार की पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमको ये जो टेंशन है, ये जो शरीर के लिए जो टेंशन है उससे हम मुक्त हो जाए, हर व्यक्ति यही चाहता है पहला काम। आत्मा के लिए तो बाद में सोचते हैं, हालांकि प्रथम हमारा कार्य आत्मा को भोजन देना होता है, क्योंकि हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, लेकिन हम इतना ग्रॉस हो चुके हैं, इतना पकड़ के बैठे हुए इस शरीर को ना, कि इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि पहले इस शरीर के समस्याओं से मैं दूर हूं, अच्छा सुख सुविधा हो जाए, ये हो जाए, अच्छा गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, सब कुछ हो जाए, क्या क्या सब प्लान करता है। ये भी संभव हो सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम आसक्त होके इस शरीर से दे रहे हैं ना, ये भी एकमात्र संभव केवल केंद्र बिंदु भगवान को बनाने से ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। लोग मर जाते हैं बंगलों की इच्छा रखते हुए, गाड़ी खरीदने मर जाते, नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर केंद्र बिंदु बना लिया तो भगवान भी देखते हैं कि ये तो मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो उसको लक्ष्मीपति हो क्या कमी है। लेकिन हम जानते सब है, जानते ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, मैं कोई बहुत नई नई चीजें आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं सब लोग सुने हुए हैं, जानते सब है, लेकिन जानना और मानना में बहुत अंतर है, जानते लेकिन मानते नहीं है। ज्ञान सबको है, ज्ञान है, लेकिन उसको विज्ञान में परिवर्तित करना है, विज्ञान में परिवर्तित करना मतलब समझते ना, जैसे रसगुल्ला है ना, मिठाई है तो रसगुल्ला है तो सबको मालूम है कि ये मीठा है ना, मालूम है कि मीठा है वो, लेकिन असली नॉलेज तब होगा जब उसको रसस्वादन करेगा, उसको विज्ञान बोलते हैं, वो खाएगा तब रियल में उसको पता चलेगा मीठा है। ज्ञान है कि वो मीठा है, लेकिन विज्ञान में परिवर्तित तब होता है जब हम उसको खाते हैं। तो हमको ज्ञान है लेकिन उसको विज्ञान में परिवर्तित करना है, और एक केवल एकमात्र केवल ये कथा के श्रवण के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में कोई उपाय नहीं, कोई भी साधन कर ले, कुछ भी कर ले, सारे साधन जो है ना वो केवल हमको दिग्भ्रमित भ्रमित करने वाले हैं, सभी सब भ्रमित करने वाले हैं। अल्टरनेट एकमात्र अंतिम हमारा यही है कि हमको भागवत की शरण लेना चाहिए, गीता और भागवत की शरण, और उनके आदेशों का जो भी पालन करता है, जो दिए ऐसी शिक्षाओं को जो अपने जीवन में उतारता है, निश्चित रूप से उसका मनुष्य जीवन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम यहीं पे इस सत्र का, आज के सत्र का समापन करते हैं, और कल फिर से हम श्रीमद् भागवत के कुछ महिमाओं को सुनेंगे, और साथ साथ में हम पितृपक्ष के विषय में और डिटेल में, थोड़ा सा संक्षिप्त में आज बताया, लेकिन कल हम डिटेल चर्चा करेंगे उसका, डिटेल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये मनुष्य जो है इस शरीर के पश्चात कैसे शरीर छोड़ता है, शरीर के पश्चात कैसे वो क्या कौन से लोगों में जाता है, क्या किया रहता है, कहाँ पे और कौन सा पृथ्वी लोग है, उसका थोड़ा डिटेल वर्णन करें, कहाँ पे वो कौन से जगह पे है और क्या होता है, सारे चीजें हम थोड़ा कल और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र का हम यही पे समापन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, बहुत ध्यानपूर्वक सब लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। श्रवण करने वाले श्रोता है सब लोग आप, क्योंकि कोई सो नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ सब लोग श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो निद्रा देवी का जो प्रभाव है ना, कथा के समय में ज़्यादा आता है। अभी ठीक है, अभी समाप्त करते हैं, फिर से हम करेंगे नहीं तो फिर से डिटेल चर्चा हो जाएगी, तो हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो कल से भी ये कौन सा टाइम रखना है प्रभु जी, कल 2 बजे का टाइम है तो वही रखें या फिर कैसे करना है? दो बजे तो समय पे सब लोग आए वो ज़्यादा अच्छा है, समय पे आएंगे तो हम ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, नहीं तो फिर मैं तो चाहूँगा कि समय पे आए, समय पे समाप्त किया जाए, है ना। तो सब लोग समय पे आए, और मेरा निवेदन है सबसे कि जो भी है आजू बाजू आप लोग के उन सबको लेके आइए, हाँ, क्योंकि ये एक सेवा हो जाता है, है ना। हम तो अपना कल्याण करने तो बैठे ही है, लेकिन हम चार लोग को, इसको बोलते प्रचार, है ना, और चार लोग को लेकर आए, और चार लोग लेकर आए, क्योंकि हाल बड़ा है ना, इसको और बढ़ाना चाहिए लोगों को, ताकि सबको लाभ मिल सके इसका। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।